अब आए एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंत, हम दोबारा इबादत के लिए जमा हुए हैं और उस वक्त के बारे में सोचते हैं जब इब्तदाई दिनों में खुदावंत की बरकात के लिए सैला में जमा हुआ करते थे, और अब आज रात हम तेरा कलाम सुनने के लिए जमा हुए हैं। और जो ही हम कलाम के बाज हिस्सों को पढ़ते चले आ रहे हैं कि सिर्फ बरा ही मोरों को खोलने या उन्हें आश्कारा करने के लायक है, और हम आज रात दुआ करते हैं जबकि हम इस अजीम छठी मोहर को समझने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि बर्रा आज रात इसे हम पर आश्कारा करे, और जब जमीन पर या आसमान पर कोई शख्स इस लायक ना मिला तो सिर्फ बर्रा ही इस लायक निकला, तो आज ऐसा हो कि वही जो बाखूबी लायक है आए और आज रात इस मोहर को हमारे लिए खोले ताकि हम पर्दाए वक्त के पीछे झांक सके, और ये बात हमारी मदद करेगी। और अब बाप, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस गुनाह भरे तारीख दिन में जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये हमारी मदद करेगी और हमको दलेरी देगी। हम एतमाद करते हैं कि हम तेरी नजर में मकबूल ठहरेंगे। हम अपने आप को कलाम के साथ तेरे सुपुर्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप तशरीफ रखें। शब बख़ैर दोस्तों, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज रात फिर हम खुदावंत की इबादत के लिए मौजूद हुए हैं। मैं जरा देर से पहुंचा हूं क्योंकि मुझे फौरी तौर पर एक मरते हुए शख्स के पास जो इस कलीसिया का मेंबर है जाना पड़ा, क्योंकि उसकी वालिदा यहां आई थी और उसने कहा कि लड़का मर रहा है। चुनाचे मैं वहां मरते हुए शख्स को जो तकरीबन मेरी उम्र का है उसको देखने के लिए गया था, और चंद ही लम्हात में मैंने उस शख्स को अपने पांव पर खड़े और खुदावंत की तारीफ करते हुए देखा। बस अगर हम खुदा से अपने गुनाहों का इकरार करने और जो कुछ दुरुस्त है वो करने के लिए तैयार रहते हैं और उसके नाम से रहम की अपील करते हैं तो वो हमें बख्शने और निजात देने के लिए तैयार रहता है। अब देखें, मैं जानता हूँ आज रात यहाँ गर्मी है और ऐसा ही है, क्या नहीं है? मेरा ख्याल है तपश तकरीबन रुक गई है, और बल्कि मैंने गुज़िश्ता रात या शायद आज रात इस बात पर गौर किया है। देखें, इस कमरे में मेरा ये सातवां दिन है कि मैं बगैर कुदरती रोशनी के हूँ। फक्त बरकी बिजली में मैं खुदा के सामने मुतालिया और दुआ करता रहा हूँ कि वो इन मोहरों को खोले, और वहाँ सवालात करने वालों का एक ग्रुप है जिनमें से बहुत सारों ने लिखा है, और गुज़िश्ता रात बहुत से सवालात लिखे गए हैं और वो बहुत ज्यादा थे या कम थे, लेकिन इतने ज्यादा भी सवाल नहीं थे। उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी भी तरह इलाही शिफा की खातिर इंतजार कर रहे हैं, और वो मजीद एक दिन और ठहरना चाहते हैं ताकि उसे हासिल कर लें, और वो इबादत पीर के रोज हो सकती है। और अगर लोग ऐसा करना चाहते हैं तो मैं सचमुच ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आप इस पर सोचकर बताएं कि आप महज बीमारों के लिए दुआ करवाना और ठहरना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये सारा वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ इन मोहरों के लिए वक्फ कर रखा है, और मैंने महज अपने आप को बाकी सब लोगों से दूर रखा है। इसलिए आप महज ये सोचकर और दुआ करके और फिर मुझे बताएं, और अगर खुदावन ने चाहा तो मैं ये करूँगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। और मेरा अगला प्रोग्राम एल्बो करके न्यू मैक्सिको के लिए है, और उसके लिए अभी चंद दिन बाकी है, और मुझे कुछ जरूरी काम के लिए घर भी जाना है कि एरिजोना की कन्वेंशन के लिए तैयारी कर सकूं, और इसी तरह फिर जो भी खुदावंत की मर्जी हो बस आप इसके लिए दुआ करें, और मैं भी ऐसा ही करूंगा, फिर बाद में इसके बारे में मजीद जान सकेंगे। मैंने इस बात को मालूम किया है, अब मैं गौर करता हूँ। देखें, जब आप बीमारी के मुतालिक गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो ये वहाँ आप मौजूद होती है। मैं देखता हूँ ये खातून जो यहाँ तशरीफ रखे हुए है, अगर कोई चीज इसकी मदद ना करे तो ये थोड़े अरसे के लिए जिंदा रह सकती है, तो फिर देखें हम इसके लिए दुआ करें कि खुदा इसकी मदद करे। बस आप इसी बात के लिए मुसाफत तय करके यहाँ आए हैं, इसलिए देखें कि रूह कुदस हर एक बात को जानता है। आप समझ गए हैं, वो जानता है لیکن غور کریں، ہم نے یہ وقت مہروں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو مہروں کے لیے مخصوص رکھنے کی کوشش کی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہاں کوئی ہے، یہاں کتنے بیمار ہیں؟ کیا یہاں کوئی ہے جو دعا کروانے کے لیے آیا ہو؟ ہمیں اپنے ہاتھ دکھائیں، ہر طرف ہاتھ ہی ہاتھ ہیں۔ او میرے خدایا، اچھا تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہوگی اور یہ خداوند کی مرضی ہوگی کہ ہم پیر کی رات کو یہاں پر قیام کریں اور پیر کی رات کو شفایا عبادت رکھیں جس میں صرف بیماروں کے لیے دعا کی جائے؟ کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بہت خوب، خداوند نے چاہا تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے، سمجھے؟ اور ہم بیماروں کے لیے شفایا عبادت کا انعقاد کریں گے، اور بدھ یا اتوار کی رات یا بلکہ پیر کی رات کو ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ اب دیکھیں، مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام ان لوگوں میں کوئی خلل پیدا نہیں کرے گا جن کے ساتھ میں واپس ایریزونا میں جانے والا ہوں۔ بھائی نارمن، کیا وہ یہاں موجود ہیں؟ بھائی نارمن، کیا یہ آپ کے پروگرام میں کسی قسم کی خلل تو پیدا نہیں کرے گا؟ کیا یہ بھائی فریڈ اور باقی تمام کے پروگرام کے لیے بھی ٹھیک ہوگا؟ سمجھے، بہت اچھا، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ پھر خداوند نے چاہا تو پیر کی رات کو ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ بیماروں کے لیے دعا کرنے کی خاطر صرف ایک ہی رات الگ کی گئی ہے، اس کے بعد مزید کوئی مہر بھی باقی نہ رہے گی، اور جیسے ہی خداوند ان مہروں کو آشکارا کر دیتا ہے تو پھر پیر کی رات کو ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ اب دیکھیں، میں نے ان باتوں کے وسیلے خداوند کی خدمت کا بے حد لطف اٹھایا ہے۔ کیا آپ نے ان مہروں کے آشکارا ہونے سے لطف اٹھایا ہے؟ اب دیکھیں، آج ہم پانچویں بلکہ چھٹی مہر کے تعلق سے سیکھیں گے، اور یہ چھٹے باب کی بارہویں سے سترویں آیت تک چلتی ہے۔ یہ طویل مہروں میں سے ایک ہے، یہاں کافی کچھ وقوع میں آتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ ہر مرتبہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پچھلی والی کی دہرائی کی ہے، اب بھی تھوڑی دیر کے لیے گزشتہ رات کی دہرائی کریں گے۔ اور پھر میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس باکس میں چار یا پانچ ایسے لکھے ہوئے سوال پائے ہیں جو میرے لیے بہت ہی اہم ہیں، جس میں مجھے لکھا گیا ہے، اور میں اس کے لیے یقیناً معافی چاہتا ہوں۔ کیا ٹیپ چل رہی ہے؟ میں اپنے خادم بھائیوں اور سب سے جو یہاں حاضر ہیں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ رات جب میں ایلیا کے بارے میں بول رہا تھا کہ جس وقت وہ اس نے سوچا کہ صرف وہی ایک ہے جو اوپر اٹھایا جائے گا، یا صرف وہی ایک ہے جو بچایا جائے گا، اور میں نے 7,000 کی بجائے 700 کہہ دیا تھا، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے سامعین، مجھے اس بات پر افسوس ہوا ہے، میں اس بات سے بہتر واقف ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں یہ 7,000 تھے، اس لیے یہ صرف زبان کی غلطی ہے، میں فقط درست طور پر ادا نہ کر سکا۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں آپ اس کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کے لیے میں خوش ہوں۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے اس پر غور کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے، اور یہ 7,000 ہی تھے، اس پر مجھے 2 یا 3 پیغام موصول ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے، بھائی برہنم، میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلطی ہوئی ہے، ان میں لکھا ہے، کیا وہ 700 کی بجائے 7,000 نہیں تھے؟ میں نے سوچا کہ یقیناً میں نے 700 کا لفظ استعمال نہیں کیا، سمجھے؟ اور پھر مجھے خیال آیا، بلی، اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک اور پرچی کو پکڑا جس پر یوں لکھا تھا، بھائی برہنم، آپ نے، میرا خیال ہے آپ نے 700 کہا تھا، اور ایک اور شخص نے کہا، بھائی برہنم، کیا وہ ایک روحانی رویا تھی؟ کہ اس قسم کی کوئی مثال ہوگی اور آپ اس کو ساتھ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوں؟ دیکھیں، جب آپ ایسی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ لوگوں کو ایک کنارے پر لا کھڑا کر دیتی ہیں، اور یہ بات کافی ہے کہ اس نے مجھے ایک کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آج جب یہ مہر ظاہر ہوئی تو کچھ واقعہ ہوا، اور چہل قدمی کرنے کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مکمل طور پر باہر سین میں جانا پڑا، اور یہ درست ہے، اس بات سے میرا دم مکمل طور پر گھٹنے لگا تھا، سمجھے؟ اس لیے جب آپ نے یہ بات بتائی تو یہ بھی بے چینی ہے، او میرے خدایا، سمجھے؟ دیکھیں، ایک اور بات ہے، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں خدا مجھے ذمہ دار ٹھہرائے گا، سمجھے؟ چنانچہ ان باتوں کے متعلق مجھے پورے طور پر جتنا میں مطمئن ہو سکتا ہوں اتنا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کیونکہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی وقت ہے۔ جی ہاں، میں پیر کی رات کے لیے الہی شفا کی عبادت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بھائی نیول، کسی بھی طرح سے یہ عبادت آپ کے کام میں دخل اندازی کا سبب تو نہیں بنے گی؟ تو پھر ٹھیک ہے، پیارے بھائی نیول، میں آپ کو بتاتا ہوں कि उन्होंने सिर्फ एक ही कॉपी तैयार की है। मैं समझता हूँ कि वो नमूने को खो बैठे हैं, इसलिए ये एक ही है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो यकीनन मेरा एक बहुत ही अच्छा और गहरा दोस्त रहा है। अब ये टैबरनेकल तामीर हो चुका है और संडे स्कूल के कमरे और बाकी सब कुछ नया और बातरतीब है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो यहाँ जेफरसन मिल में रहते हैं, इनमें से जो गिरजाघर में आना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन जगह है और संडे स्कूल के लिए भी बेहतरीन जगह है और बेहतरीन उस्ताद बाई नेवर जो नौजवानों की जमायत के लिए यहाँ मौजूद है, जो कि एक हकीकी पासवान है। मैं ये बातें इसलिए नहीं करता कि उनको फूलों का एक गुलदस्ता पेश करूं, बल्कि मैं उनके चले जाने के बाद फूलों का हार पेश करने की बजाय यहाँ गुलाब का एक फूल पेश करना ज्यादा पसंद करूंगा। और भाई नेवल को मैं इनके लड़कपन से जानता हूँ और अब तक उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ये अभी तक आर्मन नेवल हैं, जिस तरह के वो हमेशा रहा करते थे। मुझे याद है जब मैं इनके पास जाया करता था, इनके दिल में इस कदर वसत थी। जब इसी शहर में ये मेथोडिस्ट मनाते थे तो ये मुझे अपने पुलपट पर आने के लिए कहा करते थे। और क्लार्कसविल में हमारी एक अच्छी इबादत थी, शायद मेरा ख्याल है वो हार्वर्ड पार्क हैरिसन एवेन्यू मेथोडिस्ट चर्च कहलाता था। सिस्टर नेवल ने, मेरा ख्याल है कि इसने आपको वहीं तलाश किया था क्योंकि ये भी वहीं रहती थी। मैंने वापिस आकर इस कलीसिया को कहा कि ये बेहतरीन लोगों में से एक है और इन्हीं दिनों में किसी दिन मैं इसको खुदावंद यीशु के नाम में बपतिस्मा दूंगा, और ऐसा ही हुआ और आज ये यहाँ मौजूद है और अब वो मेरे साथ मेरा हमनवा है और वो बेहद काबले तारीफ और काबले इज्जत शख्स है और ये हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है जिस कदर मुमकिन हो सकता है। ये मेरे साथ खड़ा होता है, जो कुछ मैं कहता हूँ ये मेरे साथ होता है और उस बात पर भी कायम रहता है। यहाँ तक कि जब ये पहली मर्तबा यहाँ आया तो इस पैगाम को समझ नहीं सका था, लेकिन ये इस पर यकीन रखता था और ये इस पर कायम रहा। इस किस्म के भाई के लिए ये काबिल एहतराम और इज्जत की बात है। अब मैं इस भाई के लिए मजीद नहीं कह सकता, अब खुदावंद इसको बरकत बख्शे। ठीक है, और अब हम गुजरी शाम की पांचवी मोहर के खुलने का जरा पसे मंजर देखेंगे, ना कि आज रात वापिस दोबारा सारी मोहर को, बल्कि सिर्फ याद दहानी के लिए पांचवी मोहर की कुछ बातें देखेंगे। अब देखें, हमने मालूम किया कि उसमें एक मुखालफ मसीह था जो सवार होकर आया और उसने अपने आप को तीन ताकतों में लपेट रखा था। ये सब एक ही ताकत बनकर जर्द घोड़े, मौत पर सवार होकर अथाह गड़े और हलाकत में चला गया जहाँ से वो आया था। और फिर हमने देखा, कलाम कहता है कि जब दुश्मन तूफान की तरह आता है तो खुदा का रूह भी उसके मुकाबले में खालस मियार खड़ा करता है। और गुज़िश्ता रात हमने उसको कलाम से पूरे तौर पर जाहिर होते हुए देखा था, क्योंकि वहाँ चार मुख्तलिफ जानदार थे जिन्होंने चार मर्तबा उस सवार को जवाब दिया और वो हमेशा मुख्तलिफ घोड़े पर सवार होकर आया। सफेद घोड़ा, उसके बाद लाल घोड़ा, फिर काला घोड़ा और आखिर में जर्द घोड़े पर जाहिर हुआ। और हमने उन रंगों को भी जाना कि वो क्या थे और उन्होंने क्या किया। फिर हम उनको ठीक वापस कलीसिय जमानों में ले गए और उन्होंने बिल्कुल ठीक यही किया। बस आपने देखा कि जब खुदा का कलाम आपस में बाहम मिलता है तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त है, आप समझे? जी हाँ, मैं यकीन करता हूँ हर चीज जो खुदा के कलाम के साथ मिलती है हमेशा आमीन कहती है, समझे? अब देखें, जिस तरह एक शख्स ने कहा कि इनको एक रोया मिली और उसने कहा कि वो रोया ही थी और वो जानता है कि वो खुदा की तरफ से मिली है क्योंकि वो बड़ी कुवत के साथ आई है। ठीक है, हो सकता है वो रोया ठीक हो, लेकिन अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है बल्कि कलाम के बरक्स है तो वो दुरुस्त नहीं है, समझे? अब देखें, हो सकता है कुछ मोरमन भाई और बहनें यहाँ तशरीफ फरमा हूँ, अब हो सकता है कि वो इन रिकॉर्ड शुदा टेपों को भी हासिल करें। अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, अगर आप या मैं बेहतरीन लोगों में से कुछ लोगों को मिलना चाहते हैं तो वो मोरमन लोग हैं, बहुत ही अच्छी किस्म के लोग हैं। फिर इनका नबी जोसेफ स्मिथ, जिनको मेथोडिस्ट लोगों ने सफर के दौरान यहाँ इलिनॉय में कत्ल कर दिया था, हालांकि वो एक अच्छा इंसान था और मुझे उस शख्स पर हरगिज कोई शक नहीं कि उसके पास रोया नहीं थी। मुझे यकीन है कि एक मुखलस शख्स था, लेकिन जो रोया उसके पास थी वो कलाम के बरक्स थी, समझे? इसी वजह से उनको ये बात दुरुस्त साबित करने के लिए मोरमन की बाइबल तैयार करनी पड़ी, समझे? लेकिन मेरे लिए ये यहाँ है, ये कलाम है, यही वजह है कि ये सिर्फ कलाम है और बस यही सब कुछ है, समझे? एक मर्तबा बाहर के मुल्क से एक खादम यहाँ आया और उसे मैंने उसे बाहर एक शख्स के साथ نہیں بلکہ ایک خاتون کے ساتھ کار میں ادھر ادھر جاتے دیکھا اور وہ عبادت میں آئے. میں نے معلوم کیا کہ وہ دو یا تین دنوں سے گاڑی چلا رہے تھے اور صرف وہ خادم اور وہ خاتون دونوں مل کر میٹنگ میں یعنی عبادت میں آتے جاتے تھے اور وہ خاتون تقریباً تین یا چار مرتبہ شادی کر چکی تھی اور یہ خادم اس ہوٹل میں آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے بھاگ کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں نے اس سے ہاتھ ملایا. اوپر اٹھا اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے اسے پوچھا کہ اگر آپ فارغ ہیں تو کیا ایک لمحہ کے لیے میں آپ کے کمرے میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا یقیناً بھائی برینم. میں اس کو کمرے کے اندر لے گیا اور میں نے اس خادم سے کہا پادری صاحب جناب اعلی آپ اس ملک میں اجنبی ہیں. اور میں نے کہا لیکن اس عورت کا کافی حد تک نام ہے. میں نے کہا اور آپ فلاں فلاں مقام سے سفر کر کے فلاں فلاں مقام پر پہنچے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں جناب. میں نے کہا کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ ایک طرح سے میں آپ پر شک نہیں کرتا لیکن آپ سوچتے نہیں کہ یہ بات ایک خادم کی حیثیت سے آپ کو بدنام کر دے گی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس سے کچھ بہتر نمونہ پیش کرنا چاہیے؟ اس نے کہا او وہ ایک مقدس خاتون ہے. میں نے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے کہا لیکن بھائی پتا ہے بات کیا ہے؟ جب سب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اسے ایک مقدس خاتون کی حیثیت سے نہیں دیکھتے. غور کریں بلکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور اس نے کہا بلکہ میں نے کہا کہ وہ خاتون اب تک چار یا پانچ شادیاں کر چکی ہے. اس نے کہا جی ہاں میں اس بات سے واقف ہوں. اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں نے کہا کیا آپ نے اس کے متعلق جو آپ کر رہے ہیں اپنی ابائی کلیسیا میں اس کے بارے میں کچھ سکھایا ہے؟ بس اس نے کہا نہیں. لیکن اس نے کہا بھائی برہنم کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق میرے پاس ایک رویا تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے. میں نے کہا بلکہ اس نے کہا آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں اس کے متعلق آپ کی تعلیم کو تھوڑا سا درست کر دوں؟ میں نے جواب دیا یہ تو بہت اچھا ہے. اور اس نے کہا بلکہ میں نے کہا جناب میں اس بات کو معلوم کر کے خوش ہوں گا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں اس رویا میں اس نے کہا میں اس میں سویا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا جی میں تو پھر یہ سمجھا کہ وہ ایک خواب تھا سمجھے. اور اس نے کہا کہ میری بیوی اس نے کہا وہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ منسلک تھی اور کہا لیکن وہ میرے بھی ارد گرد رہتی تھی اور کہا وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا او میری جان مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو. اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اس کے بعد اب میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گی. خادم نے کہا بے شک میں اس کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اور کہا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور کہا پھر اس نے کہا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ میں نے اس رویا کی تعبیر حاصل کی. اس نے کہا کہ وہ عورت تھی. اس نے کہا یقیناً وہ ان اوقات میں شادیاں اور بہت کچھ کر رہی تھی. اس نے کہا اس کو شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ خداوند اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے اس لیے وہ جتنی مرتبہ چاہے شادی کر سکتی ہے. میں نے کہا آپ کی رویا بہت پیاری ہے لیکن یہ حقیقت سے بہت دور ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے سمجھے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا مت کریں سمجھے. چنانچہ آپ کلام کو کلام کے ساتھ مطابقت رکھتا دیکھیں کہ وہ متواتر آپس میں تسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کلام مقدس اسے چھوڑتا ہے اور کہاں وہ دوسرا اس کو جوڑتا ہے اور پوری تصویر کو کھینچتا ہے بالکل جیسے ایک پزل کو ترتیب کے ساتھ حل کیا جاتا ہے. آپ ایک ایسا ٹکڑا ڈھونڈ نکالتے ہیں جو بالکل مناسب ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی مناسب نہیں ہوتا اور پھر آپ مکمل تصویر کشی کر لیتے ہیں اور صرف ایک ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے اور وہ برا ہے اس لیے ہم اس پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ہی سوار تھا جو ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتا رہا اور پھر ہم نے دیکھا اور ٹھیک تعقب کیا اور وہ سب کچھ جو اس نے کیا ہم نے اسے باغور دیکھا اور یہ بھی معلوم کیا کہ جو کچھ اس کے پیچھے کلیسیا زمانوں میں ہوا تھا وہ کس طرح ایک حیوان کی صورت میں آگے بڑھتا ہے اور کوئی کام سر انجام دیتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اس نے کیا اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی کوئی آیا اور جو پہلے زمانے کے لیے بھیجا گیا وہ برا بلکہ ببر شیر تھا بے شک وہ کلام یعنی مسیح تھا. اس سے اگلا جو تاریخ زمانے میں بھیجا گیا وہ ایک بیل کی صورت میں تھا. جب کلیسیا نے اپنے آپ کو منظم کر لیا اور کلام کی جگہ عقائد کو قبول کر لیا اور آپ کو یاد ہے تمام چیزیں دو چیزوں پر مبنی تھی ایک مسیح اور دوسرا مخالف مسیح اور یہ آج بھی بالکل اسی طرح ہے. آدھا کرسچن ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی شخص پرہیزگار یا شرابی نہیں ہوتا और ना ही कोई स्याह सफेद परिंदा होता है, ना ही गुनाहगार मुकद्दस होता है, हरगिज नहीं। आप दोनों में से कोई एक गुनाहगार या फिर एक मुकद्दस हो सकते हैं, समझे? आप एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते। आप या तो नए सिरे से पैदा हुए हैं या फिर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं। आप या तो रूह कुदस से मामूर हैं या फिर रूह कुदस से मामूर नहीं है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर किस कदर जोश और जज्बा है। अगर आप पाक रूह से मामूर नहीं है तो आप उससे मामूर नहीं है, समझे? और अगर आप उससे मामूर हो चुके हैं तो आपकी जिंदगी उसको आया करेगी और यह खुद ब खुद नजर आएगी, समझे? किसी को इसके मुतालिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ही देख लेंगे, क्योंकि वो एक मोहर है। अब देखें, हमने देखा था कि वो हैवान किस तरह हर बार सवार हुआ। एक को सियासी कुव्वत की खिदमत के साथ भेजा गया कि वो मजहबी ताकत और सियासी ताकत को बाहम जोड़ दे, लेकिन हमने देखा कि उनका मुकाबला करने के लिए खुदा ने अपनी कुव्वत भेजी। हम ठीक तौर पर वापस गए और देखा कि कलीसिया जमाना क्या था, और फिर मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल उसी तरह था। फिर हमने देखा जैसे ही एक दूसरा जमाना आया तो दुश्मन ने मुखालफ मसीह को मजहब के नाम यानी मसीह के नाम और कलीसिया के नाम पर रवाना किया। जी हाँ जनाब, यहाँ तक कि वो कलीसिया का नाम इख्तियार करके बाहर निकला और उसने ये दावा किया वही हकीकी कलीसिया है, समझे? मुखालफ मसीह रूस नहीं है, ना ही मुखालफ मसीह कोई और है। मुखालफ मसीह हकीकी मसीहत के बहुत करीब होगा, यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि वो हर उस शख्स को जो बनाए आलम से पेशतर चुना नहीं गया बेवकूफ बनाएगा, और ये बात दुरुस्त है। बाइबल कहती है कि आखिरी दिनों में हर एक जो पहले से चुना हुआ नहीं उसके साथ ऐसा ही होगा, मगर जो चुने हुए हैं, क्योंकि लिखा है चुने हुए। अब कोई भी शख्स इस लफ्ज को लेकर कलाम के हाशिए पर लिखी हुई इबारत के साथ मिलाकर देख सकता है इसका क्या मतलब है। वहाँ लिखा है पेशतर से चुने हुए या बरगजीदा, समझे? वो हर उस शख्स को जिनके नाम बनाए आलम से पेशतर बरा की किताबे हयात में लिखे हुए नहीं है उन्हें बेवकूफ बनाएगा। जब अजल ही में बर्रा जबा किया गया था तो उसी वक्त किताब में नाम भी लिखे गए थे। वो आज रात पाक मकाम के अंदर जलाल में खड़ा हुआ शिफायत कर रहा है। वो हर उस रूह के लिए शिफायत कर रहा है जिसका नाम उस किताब के अंदर है, मास्वाय उसके और कोई शख्स उस नाम से वाकिफ नहीं है। वही एक है जिसने किताब को अपने हाथ में पकड़ रखा है, और वही उन्हें जानता है कि कब आखिरी शख्स अंदर आएगा। उसके बाद उसकी शफायत के दिन खत्म हो जाएंगे, फिर वो उनका दावा करने के लिए आएगा जिनकी उसने शफायत की थी। अब वो छुड़ाने वाले कराबती का किरदार अदा कर रहा है और वो अपने लोगों को लेने के लिए आगे बढ़ता है। ओ मेरे खुदाया, ये बात हर मसीही को अपना आप जांचने के लिए आमादा कर देगी, ताकि वो अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाकर कहे, ए खुदावंद, मुझे साफ कर, मेरी जिंदगी की पड़ताल कर, और मुझे देख कि मेरा कौन सा हिस्सा गलत है, और मुझे जल्दी से उस रास्ते से हटने की तौफीक दे। क्योंकि अगर रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनाहगार और बेदीन का क्या ठिकाना होगा। ये जांच पड़ताल करने का वक्त है। अगर आप इस मकाम पर रहें और चाहें और ये कलाम दिया जाए तो आप देखें, मैं नहीं चाहता कि आप उसके मुतालिक मुझसे सवाल करें, क्योंकि इस तरह मुझे दूसरे के साथ लटका रहने दें। मेरा मतलब आपके सवालात लिखने से है। मेरा ख्याल है सवाल किसी न किसी तरह से हल हो चुके हैं। ये वक्त अदालत के मुतालिक तहकीक करने का है, और ये दुरुस्त है। अब देखें इन बातों के मुतालिक नरसिंगों या प्यालों के अंदर देखेंगे। जब कभी खुदावन ने मौका दिया हम इस तहकीक करने वाली अदालत को देखेंगे, और अफसोस होने से जरा पहले हम इसे देखेंगे, और हम देखते हैं कि वो दुरुस्त है। और आप उन तीन फरिश्तों से वाकिफ हैं जो जमीन के रहने वालों के मुतालिक चिल्लाते हैं कि अफसोस अफसोस जमीन के रहने वालों पर अफसोस, और अब हम उसी होलनाक वक्त में से गुजर रहे हैं। आप गौर करें, ये चीजें जिनके दरमियान हम हैं, जिनका हम ठीक अभी मुतालिया कर रहे हैं, ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद वाके होंगी। देखें, ये चीजें मुसीबत के वक्त होंगी, और मैं समझता हूँ कि ये बात हर ईमानदार के दिल में हकीकी तौर पर तय हो जानी चाहिए कि ये कलीसिया कभी भी मुसीबत के दौर से नहीं गुजरेगी। आप किसी भी तरह जलाली कलीसिया को मुसीबत के दौर में दाखिल नहीं कर सकते, बल्कि आप कलीसिया को वहाँ रख सकते हैं, लेकिन दुल्हन को कभी नहीं रख सकते। गौर करें, क्योंकि दुल्हन जा चुकी होगी। देखिए, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह नहीं है और ना ही कोई चीज उसके खिलाफ है। खुदा के फजल ने उसे डांप रखा है, और सफेद करने वाले रंग काट ने उसके हर गुनाह को इस कदर दूर कर दिया है कि उनको याद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदा की हजूरी में पाकीजगी और कामलियत के सिवा कुछ नहीं है। ओ, इस बात से दुल्हन को अपने घुटनों के बल होकर खुदावंद के सामने चिल्लाना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में सोच रहा हूँ। بشرطے کہ میں ابتدائی حصے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. میں یہ ایک مقصد کے تحت کر رہا ہوں, اور پھر محسوس کرتا ہوں جب تک میں یقین نہ کر لوں کہ روح اب ٹھیک شروع کرنے کو ہے. یہ ایک مقدس بات ہے, سمجھے؟ دیکھیں, یہ ایسا ہی ہے. اب وہاں ان باتوں کو کون جانتا ہے سوائے خدا کے؟ کوئی بھی نہیں جانتا, اور نہ ہی ان کو یہاں کیا جا سکتا تھا. اور بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سے قبل یہاں نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل درست ہے, سمجھے؟ پہلے صرف ان کا اندازہ لگایا گیا تھا, لیکن اب ہم ان کو ٹھیک سچائی سے, مکمل سچائی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں, سمجھے؟ دھیان دیں. اب دیکھیں, مغرب میں ایک لڑکی تھی جو ایک ایسے مرد کے دامن محبت میں گرفتار ہو گئی جو اس کی محبت میں گرفتار تھا. وہ اسلحہ ساز کمپنی کے لیے مویشی خریدنے کے لیے آیا کرتا تھا, اور ان میں بڑی محبت ہو گئی تھی. ایک دن کا ذکر ہے کہ مالک خود اور اس کا بیٹا شکاگو سے آئے, اور یقیناً انہوں نے انہیں باقاعدہ مغربی سرحد کے اوپر رکھا, اور جو لڑکیاں وہاں تھیں انہوں نے اپنے اچھے اچھے کپڑے پہنے. آپ کو معلوم ہے یقیناً ان میں سے ہر ایک اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ حاکم اعلیٰ کا بیٹا تھا. چنانچہ انہوں نے خود کو اپنے مغربی سرحد کے لباس سے آراستہ کیا, اور لوگ مغرب میں اسی طرح کرتے ہیں. وہ ان قصے کہانیوں کو سنتے ہیں, اور بھائی میگوائر میرا خیال ہے ابھی وہ یہی ہے. انہوں نے اسے شہر کے اندر بغیر مغربی لباس کے دیکھا, اور اس کو جیل کے اندر بند کر دیا, اور اسے کینگرو کے ہاتھے میں بند کر دیا تھا, اور اس کو جرمانہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اسے مغربی لباس پہنا کر باہر نکال دیا, اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے باقی لوگ اپنی بندوق کو لٹکائے ان کے ارد گرد گھومتے رہے, اور وہ فقط اپنے علاقے میں گھومتے ہیں, اور وہ پچھلے زمانے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے, سمجھے؟ اور کینٹکی میں بھی لوگ گزرے ہوئے مغربی طرز کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا نیفرو ویلی میں جا کر دیکھیں, وہاں کچھ ہے جو یہ کرنے کا باعث بن رہا ہے. لیکن جب اصلی اور پرانی خوشخبری کی طرف واپس جانے کی بات کی جاتی ہے تو آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے, بلکہ آپ کسی جدید چیز کو چاہتے ہیں, سمجھے؟ دیکھیں, آپ اس کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے غلطی کرواتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اسے شراب نوشی کرنے پر مجبور کرتی ہے, یا کسی عورت کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس عورت کے اندر کسی چیز کی پیاس ہوتی ہے, اور اسی طرح اس مرد کے اندر کسی چیز کی پیاس ہوتی ہے. یوں وہ اس پاکیزہ پیاس کو بجھانے کی کوشش دنیاوی چیزوں سے کرتے ہیں, جبکہ وہ پیاس خدا کو بجھانی چاہیے. خدا نے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہے تاکہ آپ کو پیاس لگے, اور یہی سبب ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے پیاسے ہوتے ہیں. خدا نے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہے تاکہ آپ اپنی پاکیزہ پیاس کو اس کی جانب مبذول کریں, سمجھے؟ لیکن جب آپ اس پیاس کو خود بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی ایسا کرنے کی کس طرح جرات کر سکتا ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ایسا کریں. آپ کو اپنی پاکیزہ پیاس کسی متبادل چیز کے ساتھ نہیں بجھانی چاہیے. اور پھر جب آپ دنیا کی طرف منہ موڑتے ہیں تو آپ اسے دنیاوی طریقوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو معمور کر سکتی ہے, اور وہ خدا ہے, اور اس نے آپ کو اسی طرز کا بنایا ہے. چنانچہ ان جوان لڑکیوں نے اس لڑکے کے لیے جب وہ باہر نکلا تو مغربی لباس پہنا, اور ان میں سے ہر لڑکی کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اس لڑکے کو حاصل کر لیں گی. اسی چراگاہ میں ان کی ایک چچا زاد بہن بھی رہتی تھی, اور وہ یتیم تھی, اور وہ ان لڑکیوں کا سارا کام کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے ناخنوں پر مصنوعی ناخن وغیرہ لگائے تھے. آپ جانتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں, اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے برتن اور دیگر صفائی وغیرہ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے وہ لڑکی تمام مشکل اور سخت کام کرتی تھی, اور آخر کار جب وہ لڑکا آیا تو وہ سب ایک گھوڑا گاڑی پر باہر گئیں, اور مغربی طرز سے اس کا استقبال کیا. اور آپ جانتے ہیں وہ بندوقوں کو ہاتھ میں لیے گولیاں چلاتی ہوں اور باہر آئیں, اور اسی طرح ایکٹنگ کرتی رہیں. اس رات انہوں نے رقص کی بہت بڑی تقریب کی, اور پرانی طرز کا ناچ کیا, اور تقریباً ارد گرد سے دوسری چراگاہوں کے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ناچنے کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے بلایا. اور پہلی بات جو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس جوبلی کے لیے دو یا تین روز تک ایسا ہی کرتے رہے. پھر ایک رات وہ لڑکا اس جگہ سے اٹھا اور باہر گیا کہ اس ناچ سے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرے, اور ان لڑکیوں سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرے. اور یوں ہوا کہ اس نے مویشی خانہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ دیکھا. وہاں ایک لڑکی تھی جو دیکھنے میں کافی خستہ حال تھی, اور اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک برتن تھا. وہ برتنوں کو صاف کر چکی تھی. اس لڑکے نے سوچا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا, میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. बस वो माल गोदाम के ऊपर से चक्कर काट के मवेशी खाने की तरफ गया ताकि उसे मिले। वो नंगे पांव थी, वो रुक गई और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने देख रखा था कि वो कौन है और वो उससे शर्मा रही थी और वो जानती थी कि वो बहुत बड़ा आदमी है। फिर वो बाकी लड़कियों की कजन थी और उनका बाप इस बड़े हथियारों के कारखाने में एक फोरमैन था, इसलिए वो लड़की वो बस नीचे ही देखती रही और वो नंगे पांव होने की वजह से शर्मसार थी। उस लड़के ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसे अपना नाम बताया। फिर पूछा, तुम वहाँ उस जगह क्यों नहीं हो जहाँ बाकी सब लड़कियाँ मौजूद हैं? उस लड़की ने एक तरह से बहाना बना लिया। बस अगली रात उसने दोबारा उस लड़की को देखना चाहा। बिलाकर वो बाहर बैठा हुआ था और सब अपने अपने मशागिल और दूसरी चीजों में मसरूफ थे, लेकिन वो मवेशी खाने की बाड़ के पास बैठकर उस लड़की की तरफ देख रहा था कि वो आए और बर्तनों का पानी बाहर फेंके। और उसने उसको देखा और उससे कहने लगा, उसने कहा, क्या तू जानती है मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? उसने कहा, नहीं जनाब, मैं नहीं जानती। उसने कहा, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने लिए एक बीवी तलाश करूं। उसने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा किरदार देखा है जो बाकी लड़कियों के अंदर नहीं है। मैं कलीसिया की बाबत सोच रहा हूँ, आप समझे? लड़के ने कहा, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? लड़की ने कहा, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि मैं, देखें, इसलिए कि वो खास मालिक का बेटा है और वो तमाम मुल्क की कंपनियों और चरागाहों का गर्ज के हर चीज का मालिक है, आप समझे? उसने कहा, हाँ बोलो। फिर कहा, क्योंकि मैं शिकागो में इस किस्म की लड़की तलाश नहीं कर सका, मैं एक हकीकी बीवी चाहता हूँ, मैं एक बाकरदार बीवी चाहता हूँ और जिस चीज का मैं मुतलाशी हूँ वो मैंने तुम्हारे अंदर देखी है। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? उस लड़की ने कहा, बेहतर है। इस बात ने उस लड़की को हैरत ज़दा कर दिया था और उसने कहा, हाँ करूँगी। उस लड़के ने कहा, ठीक है, और उसे बताया कि वो फिर वापस आएगा। उसने कहा, अब देखो तुम अपने आप को तैयार कर लेना और अब से ठीक एक साल के बाद मैं वापस आऊँगा, ठीक है, और तुमको हासिल करके यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ले जाऊँगा और मैं तुम्हें लेकर शिकागो जाऊँगा और वहाँ तुम्हारे लिए एक ऐसा मकान तामीर करूँगा जो तुमने कभी ना देखा हो। उस लड़की ने कहा, मेरा तो कभी कोई घर ना था। उसने कहा, मैं तो यतीम हूँ। उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक हकीकी घर तामीर करूँगा और कहा, मैं जरूर वापिस आऊँगा। उस लड़के ने उसके साथ एक बात तय की और तकरीबन एक साल का वक्त मुकर्रर कर दिया। वो पूरा साल काम करती रही और जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। शायद एक डॉलर योमिया या जो कुछ भी वो कमाती थी उसमें से एक माकूल रकम बचाई ताकि अपने लिए शादी का लिबास खरीद सके। ये मुकम्मल तौर पर कलीसिया की मिसाल है, समझे? समझे, किसी भी तरह उसने अपना लिबास तैयार कर लिया। और आपको मालूम है, जब उसने अपना लिबास दिखाया तो उसकी कजन्स ने कहा, तू तो नादार और बेवकूफ लड़की है, तेरी सोच का ये मतलब है कि उस किस्म का आदमी तेरे साथ कोई वास्ता रखेगा? उस लड़की ने कहा, लेकिन उसने मेरे साथ वादा किया है। आमीन। फिर कहा, उसने मेरे साथ वादा किया है और कहा, मैं उसकी बात का यकीन करती हूँ। उन्होंने कहा, हो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, अगर उसने किसी को लेना था तो वो दूसरी लड़कियों में से किसी को लेता। अच्छा, उसने फौरन कहा, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है और मैं उसकी राह देख रही हूँ। आमीन, मैं भी किसी की राह देख रहा हूँ। बस देर से देर तक होती गई, यहाँ तक कि आखिरकार वो दिन आ पहुँचा। उसने एक खास वक्त पर आना था, इसलिए उसने अपने कपड़ों को पहन लिया। अगरचे अभी तक उसको उसकी तरफ से कोई पैगाम मसूल ना हुआ था, तो भी वो जानती थी कि वो आएगा, इसलिए उसने अपना शादी का लिबास पहन लिया और सब कुछ तैयार कर लिया। खैर, इस बात की वजह से वो लड़कियां मुकम्मल तौर पर उस पर हंस रही थी क्योंकि वह बड़ा मालिक ऊपर फोरमैन के पास आया था या फिर, लेकिन तो भी उन लड़कियों में से किसी को इस बात की खबर तक न थी, इसलिए ये सब कुछ उन लड़कियों के लिए एक पोशीदा बात थी और ये आज भी पोशीदा है, लेकिन यही हकीकत है। लेकिन उस लड़की की तमाम बुनियाद उस लड़के के उन अल्फाज पर थी, वो उसकी खातिर वापस आएगा। चुनाचे वो उसका मजाक उड़ाने लगी और वो एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उसके गिर्द नाचने लगी और कहने लगी, हाँ, और आप इस तरह की हंसी के मुतालिक जानते हैं, और इस तरह कहने लगी, ये बेचारी कितनी मासूम और बेवकूफ लड़की है। वो महज वहाँ खड़ी रही और वो इस बात से बिल्कुल ना शर्माई। वो अपने शादी के लिबास को जेबतन किए हुए थी और फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ी थी। आप जानते हैं, वो जद्दोजहद कर रही थी, मसीह की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, समझे? और वो अपने फूलों को हाथ में लिए इंतजार कर रही है। उन लड़कियों ने कहा, अब देखो, हमने तुम्हें बता दिया है, ये बात गलत है, देखो वो नहीं आएगा। उसने कहा मेरे पास अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। उसने कहा वो आएगा। ओ, और वो लड़कियां हंस दी। और जैसे ही पुराने घड़ियाल ने 5 मिनट पूरे किए, उन्होंने तेज रफ्तार घोड़े की दौड़ने की आवाज को सुना, जिसके पहियों के नीचे रेत दबती जा रही थी। और अचानक वो पुरानी घोड़ा गाड़ी रुक गई। वो उनके दरमियान से उछलकर दरवाजे से बाहर निकल आई और लड़का अपनी गाड़ी से बाहर कूदा और वो भागकर उसकी बाहों में चली गई। उस लड़के ने कहा ऐ मेरी महबूबा, अब सब इंतजार खत्म हुआ। और वो अपनी पिछली तंजीमी कजनों को वहीं बैठे छोड़ गई और वो औरतें वहीं रह गईं और वो उसके साथ शिकागो अपने घर चली गई। मैं आज भी इसी तरह के एक और वादे को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए वापिस आऊँगा। हो सकता है वो कह रहे हों कि हम पागल हैं, लेकिन भाइयों, मेरे लिए ठीक इसी वक्त जब ये मोहरें उस माफूकुल फितरत कुदरत के साथ खुल रही हैं, तो मैं तकरीबन उस आवाज को सुन सकता हूँ जैसे वक्त का घड़ियाल टिक टिक करके अब्दियत में दाखिल हो रहा हो। और मैं तकरीबन उस फरिश्ते को वहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ जो कह रहा हो कि उस सातवें फरिश्ते के पैगाम के इख्तिताम पर मज़ीद देर ना होगी। वो मासूम बाकरदार दुल्हन इन्हीं दिनों में से किसी दिन उड़कर यस्सु की बाहों में चली जाएगी और वो उसे बाप के घर ले जाएगा। आए जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो इन बातों पर सोच विचार करें। अब कलाम में शेर की खिदमत को देखें, फिर बैल जो मेहनत मुशक्कत की कुर्बानी की तस्वीर है, फिर सलाहकारों की होशियारी की खिदमत को देखें, और फिर उकाबी जमाना आता है जो इन बातों को लेकर जाहिर करता है और फिर इन्हें दिखाता है। बस गुज़िश्ता रात की इबादत में हमने ये भी देखा कि उस मोहर के साथ एक बहुत बड़ा भेद जाहिर हुआ, और ये बात मेरी सबका सोच थी जिसे मैं दुरुस्त समझ रहा था, लेकिन ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं मजबा के नीचे की रूहों को हमेशा इब्तदाई मसीही शहीद समझता रहा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जब खुदावन ने हमारे लिए इस मोहर को खोला तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात थी। ये मसीही शहीद नहीं थे, वो चलाल में उठाए जा चुके थे और अब वो दूसरी जानिब थे, और ये सब यहाँ थे। हमने देखा कि वो यहूदी थे जो उस वक्त के दौरान निकले जहाँ पर उन्हें बुलाया गया, और वो 144,000 का बाहर निकलना है। उनको हम आज रात और फिर कल रात देखेंगे जो कि छठी और सातवीं मोहर के दरमियान है, जहाँ पर 144,000 को बुलाया जाता है। फिर हमने मालूम किया कि ये वो शहीद थे जिनको कत्ल किया गया था, और फिर अब तक और उन्होंने सफेद जामे पहन रखे थे, लेकिन उनके नाम बरा की किताबे हयात में लिखे गए थे, और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया था। मैंने इस बात को खोजा है, हालांकि मुझे यकीन नहीं, लेकिन दुनिया में यहूदी लोगों के सिवा और कोई कौम ऐसी नहीं जो मुसीबतों के दौर में से गुजरी हो, जबकि गुज़िश्ता जंग के दौरान उनसे तकरीबन सब लोग ही नफरत करते थे। और जर्मनी के अंदर एकमैन ने लाखों को कत्ल किया था। आपने उनके मुकदमे की बाबत सुना है, लाखों मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया, और उसकी वजह सिवाय इसके और कोई नहीं थी कि वो यहूदी थे। यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो खुदा के लिए अपनी गवाही देने और खुदा के कलाम की खातिर कत्ल किए गए। अब हम देखते हैं कि दुल्हन के पास खुदा का कलाम और यीशु मसीह की गवाही है, जबकि उनके पास यीशु मसीह की गवाही नहीं थी। हम ये भी मालूम करते हैं कि बाइबल ने ये कहा है कि तमाम इसराइल, वो सारे इसराइली जो पहले से मुकरर किए गए हैं, निजात पाएंगे। ये बात रोमियो 11 में है। हम इस बात को जानते हैं और हमने उनकी रूहों को वहाँ देखा है। अब देखें ये किस कदर करीब है। ये इससे कब नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे पहले ये वकूम में नहीं आ सकता था, लेकिन अब आप इसको देख सकते हैं। क्या आप समझ गए हैं? देखें, अजीम रूल कदूस ने गुज़िश्ता तमाम जमानों और वक्तों की बातों को देखा और अब उनको अयां कर रहा है, और फिर आप देखें और मालूम करें ये सच्चाई है, क्योंकि वो मकाम है जहाँ वो मौजूद है। अब देखें ये मुसीबतों के दौर से पहले के वो शहीद हैं जिनको एकमैन ने कत्ल करवाया। अब देखें ये लोग उन 144,000 शहीदों की मवासलत पेश करते हैं जिनका छठी और सातवीं मोहर के दरमियान शुमार किया गया है। सातवीं मोहर ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिस दौरान आसमान पर आधे घंटे के करीब खामोशी छाई रही, और उसे सिर्फ खुदा ही जाहिर कर सकता है। उसको तो किसी जगह अलामत के तौर पर भी जाहिर नहीं किया गया। उस पर कल रात बात होगी, मेरे लिए दुआ करें, समझे? अब देखें जो ही हम छठी मोहर की तरफ बढ़ते हैं तो हम इस पर गौर करते हैं। अब जो ही हम इस छठी मोहर को मुकम्मल करते हैं तो आसमानी बाप हमारी मदद करे। अब छठे बाप की बारहवीं आयत है, और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानिंद काला और चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों की गारों और चट्टानों में जा चुके। इस पर गौर करें, उन जोरावर आदमियों की तरफ देखें, समझे उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कस्बे की हरामकारी की मैं पी रखी थी, समझे ये बिल्कुल वही तबका है जिसने उसकी मैं में से पिया था, समझे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें इसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बड़े के गजब से छुपा लो, क्योंकि उसके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। ये कैसा तारुफ है। अब सवार हैवान के सवार पर गौर करो, और वो जवाब देने वाला हैवान खत्म हो चुका है। फिर हमने उस बात को लिया है और हम शहीदों को तख्त के नीचे देखते हैं। अब उस वक्त के हिसाब से ये शहीद हकीकी ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जो मसीही ईमान बल्कि मजहबी ईमान के अंदर मरे, क्योंकि ये मसीही नहीं हो सकते। याद रखें, खुदा ने इनकी आंखों को अंधा किया हुआ था और ये उस वक्त तक अंधे रहेंगे जब तक गैर कौमों की कलीसिया रास्ते से नहीं हट जाती, क्योंकि खुदा इन दोनों ग्रहों के साथ एक ही वक्त में काम नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बात उसके कलाम के बरक्स है। याद रखें, वो हमेशा बनी इसराइल के साथ कौमी तौर पर पेश आता है, क्योंकि इसराइल कौम है, लेकिन गैर कौमों के साथ इनफरादी तौर पर काम करता है, यानी उन लोगों के साथ जो गैर कौमों में से लिए गए हैं, और इसलिए गैर कौम को उसको दुनिया के तमाम लोगों में से बनाना पड़ा। इसलिए कभी कभार इनमें यहूदी भी आकर शामिल हो जाते हैं, समझे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अरबी, आयरिश, हिंदुस्तानी और मजीद लोग इसमें शामिल होते हैं। ये दुनिया के तमाम लोग हैं जो मिलकर गुलदस्ता यानी दुल्हन बनते हैं, समझे। लेकिन अब 70वें हफ्ते के आखिरी हिस्से में जब इसराइल के साथ पेश आने का वक्त आता है तो वो इनके साथ एक कौम के तौर पर पेश आता है और गैर कौम की मियाद खत्म हो जाती है, और वो वक्त जल्द आ रहा है। हो सकता है ये आज की रात ही हो जिसमें खुदा गैर कौमों से मुकम्मल तौर पर अपना मुंह मोड़ ले। ये ठीक बात है, उसने यही कहा था, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा और वक्त इख्तिताम पर है। जी हाँ जनाब, और फिर जो नेजस है वो नेजस ही होता जाए और जो रास्त है वो रास्त ही होता जाए, समझे। और फिर मकदस में उस तख्त पर किसी भी तरह से मजीद खून नहीं है, मजबे पर मजीद खून नहीं रहा, कुर्बानी उठा ली गई है और अब वहाँ धुएं, बिजलियाँ और अदालत के सिवा कुछ नहीं है, और बिल्कुल यही वो बात है जो आज रात यहाँ डाली गई है। गौर करें, इस जगह बर्रा अपनी शफायती जगह को छोड़ चुका है, तख्त के ऊपर से शफायती काम खत्म हो चुका है, और वो कुर्बानी जिस तरह हमने उसको छुड़ाने वाले क्राप्ती और लहू लुहान बरे से तशबीह दी है, और वो आगे बढ़ता है, यानी उस बरे से जो जबा किया गया था, जो एक लहू लुहान जबा किया हुआ और कुचला हुआ था, वो आगे बढ़कर जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ से किताब ले लेता है। यहाँ पर वो दिन खत्म हो जाते हैं और जिन लोगों को उसने छुड़ाया है उनका दावा करने को आ रहा है, आमीन, हो सकता है मेरे वसीले कुछ करे। अब हम जानते हैं कि जब यूहन्ना ने कहा, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया, उस वक्त तमाम निजामे फितरत में मुदाखलत हुई, समझे। खुदा बड़े अजीम काम करता रहा है, मिसाल के तौर पर बीमारों को तंदुरुस्त करना, अंधों की आंखों को खोलना और बड़े बड़े काम करता रहा है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तमाम निजामे फितरत ही लड़ खड़ा गया। जी हाँ, सारी की सारी फितरत, देखे कि क्या वकूह में आता है। एक बड़ा भूचाल, सूरज काला हो गया और चांद ने अपनी रोशनी देना छोड़ दी। और सितारे हिल गए और गिर पड़े। और गौर करें, ये सब कुछ क्यों छठी मोहर के खुलने पर ही वकूफ में आया। मेरा मतलब है, ये कब हुआ? ठीक उन शहीदों के ऐलान के फौरन बाद, समझे? शहीदों का मामला भी यहाँ खत्म हो चुका है। अब आप देखें कि हम उस वक्त के बहुत ही करीब हैं। अब ये हमारे साथ किसी भी वक्त हो सकता है। देखें, क्योंकि कलीसिया ऊपर उठाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन याद रखें, जब ये चीजें वाकया होंगी तो उस वक्त दुल्हन यहाँ नहीं होगी। बस इतना याद रखें कि दुल्हन जा चुकी होगी। दुल्हन को इन चीजों में से किसी से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। ये कलीसिया के लिए दुखों में से गुजरकर पाक होने का वक्त है। ये उसके लिए मुकरर हो चुका है कि वो इनमें से गुजरे, लेकिन दुल्हन के लिए नहीं है, क्योंकि वो यानी उसका महबूब उसे उस राह से निकाल कर ले गया। जी हाँ जनाब, क्योंकि वो अपनी मखलसी पा चुकी है। देखें, ये कुछ इस तरह से है, ये उसका अपना चुनाव है, अपनी पसंद है, बिल्कुल जिस तरह कोई शख्स अपनी दुल्हन हासिल करता है, समझे? अब देखें, बोनचाल आए, अब इसका कलाम के साथ मुवाजना करें। मैं कुछ चाहता हूँ, क्या आपके पास कागज और पेंसिल है? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखें, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड शुदा टेप हासिल नहीं कर लेते, अब हम बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो ही आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इसे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। उस अजीम मौके के हवालों को आपस में मिलाएं, ताकि मखलसी की किताब छठी मोहर के अजीम बेद को या उस पोशीदा राज को देख सके। अब याद रखें कि ये पोशीदा बेद हैं और छठी मोहर पूरी की पूरी एक बड़ी किताब है। सिर्फ छठे तुमार को बाहम लपेटे और ये मखलसी की तमाम किताब को खोल देगा। इसका मतलब है कि ये सारी जमीन किस तरह छुड़ाई गई। यही वजह है यूहन्ना रो पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी उस किताब को लेने के लायक नहीं तो फिर तमाम मखलूक और हर चीज खत्म हो गई। वो सिर्फ एटमी जरात और छोटे छोटे रेजे और इस तरह कायनाती शौंग वगैरह में मुंतकिल हो जाएगी, हत्ता के कोई तखलीक ना रहेगी और ना कोई शख्स और ना ही कुछ और रहेगा। क्योंकि आदम किताब के हकूक को खो बैठा था, वो उससे उस वक्त महरूम हो गया था जब उसने अपनी बीवी की बात सुनी और उसकी बीवी ने खुदा के कलाम की बजाय शैतान के दलाइल को सुना, समझे? ये उस वक्त जब्त हो गई। फिर उसके बाद वो शैतान जिसने हवा को ठीक राह से हटाया था और आजमाया था, उसके गंदे हाथों में नहीं जा सकती थी। इसी वजह से ये किताब वापस अपने असली मालक के हाथों में चली गई, जिस तरह किसी वसीयत का खुलासा ठीक अपने असली मालक के पास जाता है, समझे? इसी वजह से ये किताब वापस अपने असली मालक के पास चली गई, और वो खुदाए खालिक है जिसने इसे बनाया था, और वही इसे पकड़े हुए है। इसकी एक कीमत है और वो मखलसी है। मखलसी की कुछ कीमत थी और वो कीमत कोई और इंसान अदा नहीं कर सकता था। बस उसने यूं किया और अपना कानून यानी उसने छुड़ाने वाले कराबती का अपना कानून बनाया, और फिर वो किसी को भी इस काबिल ना पा सका, क्योंकि हर शख्स जिनसी मलाप के वसीले और जिनसी ख्वाहिश के वसीले पैदा हुआ था, और वो शैतान और हवा के सबब से होने वाले गुनाह के जरिए हकीकी गुनाह में मुब्तला था। इसलिए इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मुकद्दस पोप, काहिन, इल्मे इलाहियात का माहिर या वो जो कोई भी हो, वो इसके लायक ना था और ना ही कोई फरिश्ता ये कर सकता था। लेकिन चूंकि उसे कराबती होना था तो फिर उसे एक इंसान भी होना था। बस खुदा खुद कुंवारी से जन्म लेने के वसीला से इंसान बन गया और एक कराबती बन गया, और उसने अपना खून बहाया। ये किसी यहूदी का खून नहीं था और ना ही ये गैर कौम का खून था, वो खुदा का अपना खून था, समझे? बाइबल बयान करती है कि हम खुदा के खून के वसीले बचे हैं। बच्चा अपने बाप का खून हासिल करता है, हम इस बात से वाकिफ हैं। कोई चीज जो मर्द जिन्स की तरफ से होती है वो हीमोग्लोबिन पैदा करती है। चुनाचे हम जानते हैं कि जिस तरह मुर्गी अंडे देती है, वो अंडे तो दे सकती है, लेकिन अगर मुर्गे यानी उसके साथी ने उसके साथ मिलाप नहीं किया तो वो उससे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मादा तौलीद नहीं है। औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाला आइला है जो बेजे को उठाए हुए है, लेकिन बेजा बल्कि वो तौलीदी जरसुमा मर्द से आता है। और इस मामले में बजाते खुद खुदा नर था। यही बात है जो मैं कहता हूँ कि कैसे वो जो बुलंदो बाला था पस्त हो गया, और वो जो बड़ा था छोटा हो गया। खुदा इस कदर बड़ा था कि उसने अपने आप को कुंवारी के बातन में इस कदर छोटी सी चीज से एक जरसुमा बनाया और वहाँ उसने खून और गोश्त को नशनमा देनी शुरू कर दी। वो पैदा हुआ और जमीन पर बढ़ा। इस तरह इब्तदा की, उसमें कोई मिलावट या जिनसी ख्वाहिश नहीं थी। और फिर उसने खून बहाया क्योंकि वो हमारा कराबती बन गया और वो छुड़ाने वाला कराबती था, इसलिए उसने मुफ्त खून बहाया। उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने हमें छुड़ाने के लिए मुफ्त खून बहाया। इसके बाद वो खुदा के मजबा पर जाकर वहाँ इंतजार करता है, जबकि खुदा अपने हाथ में मखलसी की किताब को लिए हुए है और लहू लहान बरा कुर्बानी के मजबा पर खड़ा है और वहाँ पर बरा मखलसी और शफायत के लिए मौजूद है। तो फिर कोई शख्स ये कहने की क्यों कर जुरत कर सकता है कि मरियम या यूसुफ या कोई और फानी इंसान शफायत कर सकता है? जब तक वहाँ खून ना हो, आप शफायत नहीं कर सकते। जी हाँ जनाब, खुदा और इंसान के बीच एक ही दरमियानी है और वो मसीह यसु है। ये वो बात है जो कलाम कहता है। वो उस वक्त तक वहाँ खड़ा है जब तक के आखिरी रूह आजाद ना की जाए। इसके बाद जिनको उसने छुड़ाया है उनका वो दावा करने आता है और वो किस कदर अजीम बाप है। अब याद रखें कि मैंने हमेशा ये सिखाया है कि हर बात दो या तीन अशकास की गवाही से पक्की होनी चाहिए। और मिसाल के तौर पर आप कलाम में से एक हवाला लेकर कुछ भी साबित नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कोई और दूसरा हवाला ना मिले, समझे? देखें, मैं एक हवाला लेकर कह सकता हूँ यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी पर लटका दिया, और दूसरा लेकर कह सकता हूँ आप जाएं और ऐसा ही करें, समझे? लेकिन आप देखें कि ये उस दूसरे के साथ मुताबकत नहीं रखेगा। मैंने सोचा कि छठी मोहर के अंदर जब पाकरू ने इसे खोला तो मैंने देखा कि ये क्या था। फिर मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि आज रात मैं जमात को कुछ फर्क बताऊं, समझे? क्योंकि अगर हमेशा मैं एक ही जैसी बात बताता रहूंगा तो वो इससे तंग आ जाएंगे। चुनाचे मैंने सोचा कि हमें कुछ मुख्तलिफ भी होना चाहिए। अब गौर करें कि ये अजीम वाकया मखलसी के भेद की किताब में सरबा मोहर किया गया और अब बरा उसे अपने हाथ में पकड़कर खोलने वाला है। आए अब मत्ती के 24वें बाब में देखते हैं। यहाँ बरा खुद बोल रहा है। अब हर कोई जानता है जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है मसीह इसका मुसन्निफ है, लेकिन यहाँ पर वो अपना बयान या अपना वाज उन लोगों को यानी यहूदियों के दरमियान कर रहा है। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी किताब इस तरह पकड़ लें, यानी मत्ती का 24वां बाब और मुकाशवा 6वां बाब बिल्कुल इस तरह, और आए थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों का मुवाजना करते हैं। अब इसकी तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि ये किस तरह है। देखें, फर्क सिर्फ ये है जो कुछ बरा यहाँ अलामतों में दिखा रहा है वो वहाँ पर कलाम की सूरत में बता रहा है और ये बात इसको दुरुस्त करती है। अब देखें, यही सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ वही है वो इसका जिक्र करता है और वहाँ पर वकू में आता है, समझे? ये एक मुकम्मल तस्दीक है। अब आए मुकद्दस मत्ती की अंजील के 24वें बाब को देखते हैं और मुकाशवा 6वें बाब का मुवाजना मत्ती के 24वें बाब के साथ करते हैं। हम सब जानते हैं कि यही वो बात है जिसके मुतल्लिक तमाम उल्मा और हर एक दीनी शख्स का ख्याल है कि ये गुफ्तगु मसीबत के जमाने के मुतल्लिक है और ये सब मत्ती के 24वें बाब में दर्ज है। आए और अब देखें, और अगर ये ऐसे ही है तो हम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 6वीं मोहर अदालत की मोहर है, यही बिल्कुल अदालत की मोहर है। अब गौर करें, हमने कलीसियाई जमानों के अंदर मुखालफ मसीह को सवार होकर आते देखा, दुल्हन को ऊपर जाते देखा, लेकिन वो दौर खत्म हो चुका और वो ऊपर उठा ली गई। फिर हमने उन यहूदी शहीदों को मजबे के नीचे देखा और अब ये उन लोगों की अदालत है, यानी उन लोगों की जो मुसीबतों की इस अदालत से बाहर है, और ये 144,000 छुड़ाए हुए यहूदियों पर वाकया होगी। मैं साबित करूंगा कि वो गैर कौमें नहीं है बल्कि यहूदी है। उनका दुल्हन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। दुल्हन हमने देखा, वो जा चुकी है और आप उसे किसी और जगह नहीं पा सकते जब तक कि वो इस किताब के 19वें बाब में वापस नहीं आती। अब गौर करें, 6वीं मोहर कलाम में अदालत की मोहर है। अब यहाँ आए मुकद्दस मत्ती के 24वें बाब को पढ़ना शुरू करें। अब यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ देखा है और तलाश किया है। अब ये मुकद्दस मत्ती के इसी बाब की पहली से तीसरी आयत तक है, ठीक है? पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और अब तीसरी आयत, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अब आए यहाँ ठहरे। असल में ये तीनों आयात मंगल सपहर बात तारीख 4 अप्रैल AD 30 में कही गई, लेकिन पहली दो आयात 4 अप्रैल 30 AD में ब्रोज मंगल सपहर के वक्त कही गई और तीसरी आयत उसी दिन की शाम को कही गई। समझे? वो हैकल में आए और उन्होंने उससे ये बातें पूछी कि इसके मुतल्लिक क्या ख्याल है और उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है, और फिर कहा, इस अजीम हैकल की तरफ देख, क्या ये अजीब चीज नहीं? उसने कहा, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। इसके बाद वो पहाड़ पर गया और वहाँ बैठ गया, समझे? और फिर वहाँ ये गुफ्तगु बाद अज दोपहर करता है, और जब वो बैठ गए तो वहाँ उन्होंने उससे सवाल किए और पूछा कि हम कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। अब गौर करें, यहाँ यहूदियों ने जो उसके शागिर्द थे उसे तीन सवाल पूछे। अब ध्यान दें, क्या पूछा? देखें, पहला सवाल था कि ये बातें कब होंगी, कि जब किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, और फिर तेरे आने का निशान क्या होगा, ये दूसरा सवाल था, और फिर दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। क्या आपने इसको देखा? यहाँ तीन सवाल है। अब यही वो जगह है जहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, वो इनको यहाँ कुछ जमानों के साथ मिला देते हैं, लेकिन जब आप उसे इन तीन सवालों का जवाब देते हुए देखते हैं तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझें कि गौर करें किस कदर खूबसूरत है। अब तीसरी आयत और तीसरी आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करें, ये बातें कब होंगी। पहले उन्होंने उसे अलग से जैतून के पहाड़ पर बुलाया और कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, ये सवाल नंबर पहला है, और तेरे आने का निशान क्या होगा, ये सवाल नंबर दूसरा है, और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, ये सवाल नंबर तीसरा है। समझे? देखें, उन्होंने वहाँ तीन मुख्तलिफ सवाल पूछे। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि आप इसको निकालें और देखें कि यहाँ यीशु किस तरह इन बातों का जवाब देता है। ओ, ये किस कदर खूबसूरत है, ये तो मुझे बल्कि मैंने इस बात को पाया है। अगली रात हमने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी मुकाशवे के मुआफिक तरकीब देने वाली तहरीक। ध्यान दें, अब आए मोहरों की इस किताब में से हम पहली मोहर की तरफ चले और उस पहली मोहर को इस पहले सवाल के साथ मिलाएं। अब हर एक सवाल का इसके साथ मुकाबला करके देखें कि क्या ये इसी तरह साथ साथ चलती है जिस तरह के हमने इन बाकियों को कलीसिया जमानों के अंदर बिल्कुल एक जैसे खुलते देखा था। फिर हमने देखा कि वो मोहर कामिल तौर पर खुली। अब ध्यान दें, क्योंकि पहले हम उसको पढ़ने लगे हैं, फिर उसने उनको जवाब देना शुरू किया और फिर उसने उन्हें जवाब देना शुरू किया, और अब हम इसका मुकाबला मोहरों के साथ करेंगे। अब गौर करें, पहली मोहर मुकाशवा 6 में 1-2 आयत में है, और अब हम इसके 6 बाब की पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं। और मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज आती सुनी कि आ और देख, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला कि और भी फतह करे। हमने देखा था ये शख्स कौन है, मुखालफ मसीह। अब मत्ती 24 और उसकी 4 और 5 आयत को देखें। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। क्या आपने इसे देखा है? ये मुखालफ मसीह है, ये है आपकी पहली मोहर। समझे? यहाँ उसने इसका जिक्र किया है और यहाँ वो मोहर मुकम्मल तौर से खोलता है। अब दूसरी मोहर मत्ती 24:6 मुकाशवा 6:3 और 4 में है। अब मत्ती 24:6 पर गौर करें, जरा मुझे देखने दें कि ये क्या कहती है। और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। बहुत अच्छा, अब दूसरी मोहर को खोलें, मुकाशवा 6:3, बल्कि 2 आयात को देखें। कि वो क्या कहती हैं। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ और देख। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये किस तरह ठीक साबित हो रहा है। ओ, मैं ये पसंद करता हूँ, कलाम का जवाब कलाम ही दे। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? ये सब कुछ पाक रू ने लिखा है और वही इसको जाहिर करने के काबिल है। अब आए तीसरी मोहर को देखें। अब ये काल की बात है। अब देखें मत्ती 24:7-8। आए मत्ती में से 7 और 8 आयत को लेते हैं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बौंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगे। देखें आप ठीक आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मुकाशवे 6 बाब में है। हम तीसरी मोहर को खोलें। ये मुकाशवा 6:5-6 में है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ और देख। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर पर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। देखें ये काल है, गौर करें। ठीक ये वही मोहर है, यीशु ने यही बात कही थी। ठीक है, अब चौथी मोहर वबा और मौत मत्ती 24 को देखें, और हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे, बल्कि 7वीं और 8वीं आयत को। मेरा ख्याल है ये चौथी मोहर के मुतालिक है। मैंने हवाला निकाल लिया है। ठीक है, अब देखें मैंने पहले क्या पढ़ा है। क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा है? अच्छा, मैंने तो निशान लगा रखा है। हाँ, हम उसी जगह पर हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं। आए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है जनाब, अब आए हम इस चौथी मोहर को 7वीं आयत से शुरू करें, और मुकाशवा 6 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत की तलावत करते हैं। अब आए मत्ती 24 की 7वीं और 8वीं आयत को भी देखते हैं। ठीक है, अब देखें, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। अब चौथी मोहर, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि चौथी मोहर अब 7वीं और 8वीं से शुरू हुई है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है। अब जरा रुके, मैंने यहाँ गलत हवाला लिख रखा है। जी हाँ, जरा एक मिनट। अब देखें 7वीं और 8वीं। अब आए मत्ती 24:7-8 को देखते हैं। आए अब देखते हैं, हम इसको निकालें। ये तीसरी मोहर का खुलना है, क्या ये ऐसे नहीं है? मत्ती 24:7-8, मैं माजरत खा हूँ। अब देखें ये बारिश को या काल को, बल्कि काल ही को बयान करती है। ठीक है, अब देखें ये वबा और मौत है। जी हाँ जनाब, अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, यानी 7वीं और 8वीं आयत की तरफ। अब ये चौथी मोहर होगी। आए हम चौथी मोहर को देखते हैं, और जब इसने चौथी मोहर खोली तो जी हाँ, वो जर्द घोड़े का सवार है जो कि मौत है, समझ गए? और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक जर्द सा घोड़ा है, और वो जर्द घोड़ा है, और इसके सवार का नाम मौत है, और आलमेरवा इसके पीछे पीछे है, और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। अब देखा कि वो मौत थी। और अब 5वीं मोहर मत्ती 24:9-13 में है। आए अब देखें दोबारा, मैंने इधर दुरुस्त हवाला निकाला है या नहीं, समझे? उस वक्त लोग तुमको एजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, यहाँ है आप, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और जब और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अब हम 5वीं मोहर पर पहुंच गए हैं, और इसको गुज़िश्ता रात बयान किया गया था, समझे? वो एक दूसरे से दावत रखेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और वगैरह वगैरह। अब यहाँ 6वीं मोहर के मुतालिक देखते हैं, जो 6 बाब की 9-11 में है। आए अब इसे देखते हैं, मुकाशवा 6:9-11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। अब आप देखें कि हम पांचवी मोहर के अंदर हम शहीदों को देखते हैं और यहाँ मत्ती 24:9 के अंदर भी हम बल्कि 13 आयत के अंदर हम शहीदों को देखते हैं। उस वक्त लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और वगैरह वगैरह। बस देखें कि बिल्कुल वही मोहर खोली जा रही है। अब ये छठी मोहर है जिस पर अब हम आ रहे हैं, जो कि मत्ती 24 की 29 और 30 आयत है। 24 की 29 और 30वीं आयत को लें। अब हम यहाँ हैं। अब देखें, इसी के साथ हम मुकाशवा 6:12-17 को भी देखेंगे। ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी पढ़ा है। आप इसे सुने, ये वो बात है जो यीशु ने मत्ती में कही 29 में, बल्कि 24 की 29 और 30 आयत में कही। फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद, ये क्या है? ये तो मुसीबत का वक्त है। देखें, वो इस मुसीबत के दौर में से होकर गुजरे। सूरज तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से जमीन पर गिरेंगे और आसमानों की कुवतें हलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। अब मुकाशवा की किताब के अंदर छठी मोहर को पढ़ें, वही जिसका अब हम मुतालिया कर रहे हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूंचाल आया है और सूरज कंबल की मानिद, देखें क्या हुआ, काला, और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आजाद सब ने खुद को गारों में और पहाड़ों की चट्टानों में छुपाया और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बरे के गजब से छुपा लो, क्योंकि उसके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा है। क्योंकि उसके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? अब बिल्कुल ठीक इस तरफ मुड़े और मत्ती 24:29 को निकाले और देखें कि यीशु ने यहाँ क्या कहा है। सुने, उसके बाद जैसे कि एकमैन और इस जैसे लोगों ने किया और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से जमीन पर गिरेंगे और आसमानों की कुवतें हलाई जाएंगी। अब ध्यान दें, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और वो देखेंगे, बल्कि और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे और वो नरसिंगे की आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। गौर करें, बिल्कुल वही बात जो यीशु ने मत्ती 24 में कही और जिसे मुकाशवा बयान करने वाले ने छठी मोहर के अंदर जाहिर किया, वो बिल्कुल एक ही चीज है, क्योंकि यीशु भी मुसीबतों के दौर के मुतल्लिक बता रहा था। समझे? पहले उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये बातें कब होंगी, जब हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। उसने इसका जवाब दिया। इसके बाद अगली बात उन्होंने पूछी कि वो वक्त यानी शहीद होने का वक्त कब आएगा और फिर वो वक्त कब होगा जब मुखालफ मसीह उठ खड़ा होगा और मुखालफ मसीह कब हैकल को मिसमार करेगा। दानियल में हम इसी तरह दानियल की किताब में जाकर इन बातों को देख सकते हैं जहां उसने कहा है और उसने आने वाले बादशाह का जिक्र किया है। और आप में से जो पढ़ने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं, वो क्या करेगा, वो दायमी कुर्बानी को माकूफ कर देगा और ये सब कुछ उस वक्त वकू में आएगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ तक कि यीशु ने भी इसका जिक्र किया है, इसकी निशानदेही की है और कहा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत किया गया है मकदस में खड़ा हुआ देखो, वो क्या है? वो उमर की मस्जिद है। जब उन्होंने हैकल को जलाया तो उस वक्त से वो वहाँ खड़ी है और उसने कहा, जो पहाड़ों पर हो और जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे, क्योंकि वो मुसीबत का वक्त होगा। क्या आप समझे? ये सब बातें वाक्या होंगी। अब ये सब कुछ वाक्या हुआ और ये साबित हुआ और ये इस छठी मोहर के खुलने की तरफ इशारा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि ये सुने, अब देखें और कल रात की बाबत एक बात को जहन में रख लें कि यीशु ने सातवीं मोहर की तालीम को छोड़ दिया है, उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। ध्यान दें, इसके बाद वो एक तमसील देता है। और यूहन्ना ने भी सातवीं मोहर को छोड़ दिया, सातवीं बल्कि सातवीं मोहर आखिरी है, और ये एक अजीम बात होगी। और देखें, ये यहाँ पर लिखी भी नहीं गई, बल्कि सातवीं मोहर को दोनों ने छोड़ दिया। और जब खुदा ने वहाँ कहा तो उसने भी, यानी मुकाशवा बयान करने वाले ने कहा, आसमान पर खामोशी छाई रही, और यीशु ने भी इसके बारे में एक हर्फ तक नहीं कहा। अब ध्यान दें और वापिस बारहवीं आयत पर आएं और देखें, यहाँ कोई जानदार नहीं है इस बात को खुला हुआ देखने के लिए। बारहवीं आयत से अपनी मोहर को शुरू करते हैं, यहाँ कोई हैवान या जानदार नहीं है जो यहाँ नुमाइंदगी करता हो, बल्कि ये वैसे ही है जैसे पांचवी मोहर में है। क्यों? ये मुसीबतों के दौर में खुशखबरी के जमाने के बाद वकूम में आई, और छठी मोहर मुसीबतों का वक्त है, यही है जो वकूम में आई और दुल्हन जा चुकी होगी, समझे? वहाँ कोई जानदार कोई और नहीं है, जो कुछ कहे ऐसा है। अब देखें, यहाँ खुदा मजीद कलीसिया के साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि वो जा चुकी है। गौर करें, यहाँ वो इसराइल के साथ काम कर रहा है। देखें, ये कलीसिया जमाने के बाद की बात है। ये उस वक्त की बात है जब इसराइली बादशाही के पैगाम को मुकाशवा 11 बाब के दो नबियों के वसीले कबूल करेंगे। याद रखें कि इसराइल एक कौम है, यानी खुदा की खादम कौम, और जब इसराइल को अंदर लाया जाएगा तो ये एक कौमी वाक्या होगा। और ये इसराइल की बादशाही का जमाना होगा जहाँ दाऊद, बल्कि इब्ने दाऊद तख्त पर बैठेगा। यही वजह थी कि औरत चिल्ला उठी, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ दाऊद, ऐ दाऊद के बेटे। खुदा ने उससे, यानी दाऊद से कसम खाई थी कि उसके बेटे को खड़ा करेगा जो उसके तख्त पर बैठेगा, और उसकी सल्तनत अबदी होगी, समझे, और उसका आखिर ना होगा। सुलेमान ने ये हैकल में तशबीह के तौर पर किया, लेकिन यीशु ने उन्हें सिर्फ ये बताया कि वहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। वो उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा था? यही कि वो वापस आ रहा है। तो कब वापस आ रहा है? मेरे आने से कब ये बातें वकूफ पजीर होंगी? और यहाँ वो बातें हैं। और इस वक्त हम मुसीबत के वक्त में, याद रखें कि जब जमीन पर सल्तनत कायम की जाएगी, अब हो सकता है कि ये बात जरा सदमा पहुंचाए, और अगर इसके मुतालिक कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके सुनने के बाद कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। हजार साल बादशाही के वक्त इसराइल एक कौम होगी, यानी वो 12 कबीले एक कौम की मानिंद होंगे, लेकिन दुल्हन महल के अंदर है। अब वो मलका है, वो शादीशुदा है, और सारी जमीन के लोग उस शहर यरूशलेम में आएंगे और अपनी शानो शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और ना ही रात होने के सबब से उसके दरवाजे बंद होंगे, वहाँ रात ना होगी, समझे? दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और जमीन के बादशाह मुकाशवा 22 अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, लेकिन दुल्हन बर्रा के साथ अंदर होगी। ओ मेरे खुदाया, क्या आप उसे वहाँ अंदर देख नहीं सकते हैं? वो, यानी दुल्हन, पाकिस्तान के अंदर मुशक्कत नहीं करेगी। नहीं जनाब, वो दुल्हन है, वो बादशाह की मलका है। ये दूसरे लोग हैं जो वहाँ मेहनत करेंगे, यानी कौमे, ना कि दुल्हन। आमीन। ठीक है, अब उन पैगंबरों पर ध्यान दें। वो दो पैगंबर शायद मुकाशवा 12 में हैं, यानी वो दो नबी, वो मुनादी करेंगे कि आसमान की बादशाही करीब आ गई है, समझे, आसमान की बादशाही कायम की जाएगी। और ये वक्त दानियल के 70 हफ्तों में से 3.5 साल का वक्त होगा, जिनका उसके लोगों, यानी यहूदियों के साथ वादा किया गया है। अब याद रखें कि ये बात साबित करने के लिए کہ دانیل کے 70ویں ہفتے کا آخری حصہ ہے. اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا گیا ہے جس کا میں کل جواب دوں گا. سمجھے؟ اب دیکھیں 70 ہفتوں کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ 7 سال ہے, اور 7 ہفتوں کے درمیان ممسوح فرما روا قتل کیا جائے گا تاکہ قربانی دے, اور 3.5 سال تک نبوت کرے گا, اور اس کے بعد لوگوں کی قربانی کے لیے قتل کیا جائے گا. لیکن تو بھی ایک عرصہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے 3.5 سال کا عرصہ باقی ہے. اور جب مسیح کو قتل کیا گیا تو یہودیوں کو اندھا کیا گیا کہ وہ نہ دیکھ سکیں کہ وہ مسیح تھا. اور پھر جب مسیح قتل کیا گیا تو فضل اور خوشخبری کا زمانہ غیر قوموں کے لیے کھل گیا, اور وہ اندر داخل ہوئے, اور خدا نے ان کو ادھر ادھر سے کھینچا. پھر انہیں پیغمبروں کے ذریعے الگ کیا, کچھ کو یہاں سے, کچھ کو وہاں سے, اور کچھ کو ادھر ادھر سے کھینچا, اور انہیں پیغمبروں کے ذریعے الگ کیا. اور اس نے پہلے پیغمبر کو بھیجا, اور اس نے منادی کی اور ایک نرسنگا پھونکا, جیسا کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اس بات پر غور کریں گے. اور پھر جیسا کہ نرسنگا ایک جنگ کا اعلان کرتا ہے, نرسنگا ہمیشہ جنگ کی علامت ہے. اور پیغمبر جب فرشتہ زمین پر آتا ہے, یعنی جب وقت کا پیغمبر آتا ہے, جیسے کہ لوتھر اور وہ دوسرے پیغمبر جن کا ہم نے ذکر کیا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے اور ایک مہر کھولتا ہے, اور مہر ظاہر ہوتی ہے, اور ایک نرسنگا پھونکا جاتا ہے, اور اعلان جنگ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے, اور پھر پیغمبر کوچ کر جاتا ہے, اور جو لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں وہ ان پر مہر کرتا ہے, اور جو اس کو رد کرتے ہیں ان پر آفت نازل ہوتی ہے. سمجھے؟ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں, اور پھر ایک دوسری تنظیم بنا لیتے ہیں جس طرح کے تنظیموں سے ہم نکل کر آئے ہیں. اور دیکھیں پھر وہ ایک اور قوت, ایک اور طاقت, ایک اور کلیسیہ زمانے اور ایک اور خدمت کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خدا بھی اپنی خدمت کے ساتھ آگے آتا ہے, جبکہ مخالف مسیح بھی اپنی خدمت کو آگے لے کر بڑھتا ہے. دیکھیں مخالف کا مطلب ہے برخلاف ہونا, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر تھوڑا سا غور کریں کہ جس وقت قائن اس زمین پر آیا اسی وقت حابل بھی آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر دھیان دیں کہ تقریباً جب مسیح زمین پر آیا یہودا بھی اسی وقت زمین پر آیا, اور تقریباً جس وقت مسیح دنیا سے رخصت ہوا یہودا بھی اسی وقت دنیا سے رخصت ہوا, اور جس وقت پاک روح نازل ہوا تقریباً اسی وقت مخالف مسیح کا روح بھی نازل ہوا. اور جب ان آخری دنوں میں پاک روح نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا تو مخالف مسیح نے بھی اپنے آپ کو سیاست اور ایسی ہی دوسری چیزوں کے ذریعے ابھارنا اور اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. اور جس وقت مخالف مسیح نے اپنے آپ کو پورے طور پر منظر پر ظاہر کیا تو خدا بھی ہمیں چھڑانے کے لیے پورے طور پر حرکت میں آ گیا. دیکھیں یہ دونوں ٹھیک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. قائن اور حابل ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کوا اور کبوتر دونوں کشتی میں تھے, یہودا اور یسوع, اور اسی طرح اس سے آگے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بس یہاں موآب اور اسرائیل دونوں ہیں. موآب بت پرست قوم نہ تھی. نہیں جناب, انہوں نے اسی طرح کی قربانی پیش کی جیسی بنی اسرائیل نے پیش کی, اور انہوں نے ایک ہی خدا کے سامنے دعا کی. ٹھیک ایک جیسا کام تھا. موآب جو کہ لوط کی بیٹیوں میں سے ایک کا بیٹا تھا, جو اپنے باپ کے ساتھ ہم بستر ہوئی تھی, اور اس بچے کو موآب کہا گیا, اور پھر اسی سے موآبی نسل اور موآب کا ملک نامزد ہوا. اور انہوں نے اسرائیل یعنی اپنے چھڑائے ہوئے بھائیوں کو آتے دیکھا. وہ بنیادی لوگ تھے, ان کی ایک بہت بڑی منظم تنظیم تھی, جبکہ اسرائیل کی کوئی تنظیم نہیں تھی, اور وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے خیموں میں رہتے تھے. لیکن موآبیوں کے پاس بادشاہ, شرفا اور وغیرہ وغیرہ موجود تھے, اور ان کے پاس بلام نام ایک جھوٹا نبی بھی موجود تھا. ان کے پاس ایسا سب کچھ تھا, اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو ملک ماؤد کی راہ پر یعنی اپنے وعدے کی راہ پر غمزن تھے لعنت دینے کے لیے آئے. اور اسرائیل نے ان کے پاس جا کر ان سے پوچھا, کیا میں تیری سر زمین سے گزر سکتا ہوں؟ اگر میرے مویشی پانی پیے تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا, اور اگر وہ گھاس کھائیں تو میں اس کی قیمت بھی ادا کروں گا. اس نے کہا, نہیں, تم یہاں اس قسم کی بیداری نہیں لا سکتے. یہ سچ ہے, تم اس طرح کی بیداری کا کوئی کام یہاں نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیں اس نے کیا کیا, وہ ایزبل کی صورت میں ایک جھوٹے نبی کے ذریعے واپس آیا تاکہ خدا کے بچوں کو غلط راہ کی طرف مائل کرے. اور موآبی عورتوں سے اسرائیلی لوگوں نے شادیاں کی, اور اس طرح وہ زناکاری کی طرف مائل ہو گئے اور اب جس زمانے میں ہم موجود ہیں اور ماؤد ملک کی راہ پر گامزن ہے اس نے اس زمانے میں بھی بالکل وہی کام کیا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ جھوٹا نبی ان کے درمیان آیا اور شادی کی اور پروٹیسٹنٹ کلیسیا میں بلا کر ان کی تنظیمیں بنائی بالکل اسی طرح جیسے اس نے پیچھے کیا تھا. لیکن بیچارے بوڑھے اسرائیلی اپنی راہ پر بالکل اسی طرح چلتے رہے. وہ بڑی مدت تک بیابان کے اندر رہے اور ان کے پرانے جنگجو لوگوں کو مرنا پڑا لیکن تو بھی وہ ملک ماؤد کی جانب بڑھتے رہے. ہاں جی ہاں, اور یردن کو پار کرنے سے قبل وہ تمام لوگ مسلح تھے. اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور اب ہم ٹھیک اسی زمانے کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں. غور کریں, اب دیکھیں, ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ وقت جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ دانیل کے 70ویں ہفتے کے آخری 3.5 برس ہیں. ذرا مجھے اس کو کھول کر بیان کرنے دیں کیونکہ یہاں کوئی ہے جو ہمیشہ اس کو باغور جانچتا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوشش کروں کہ خود کو تعلیمی طور پر بڑا صاف رکھوں. غور کریں کہ جب 70 ہفتے شروع ہوئے, جب دانیل نے آنے والے وقت اور یہودی زمانے کے خاتمے کی رویا دیکھی تو اس نے کہا 70 ہفتے مقرر ہو چکے ہیں, یہ 7 سال ہیں, کیونکہ ان کے درمیان مسیح یہاں ہوگا اور قربانی کے لیے قتل کیا جائے گا. اب دیکھیں بالکل یہی بات وقوع میں آئی. اور پھر جب تک خدا نے اپنے نام کے لیے لوگوں کو حاصل نہ کر لیا تب تک وہ غیر قوموں میں کام کرتا رہا اور پھر غیر قوم کی کلیسیا کو نکال لیتا ہے اور وہ کلیسیا کو اوپر اٹھا لیتا ہے. اور جب اس نے ایسا کیا تو سوئی ہوئی کنواریاں یعنی خود کلیسیا, کیونکہ دلہن تو اوپر چلی گئی ہے, اور خود کلیسیا کو باہر اندھیرے میں ڈال دیا گیا جہاں رونا اور ماتم اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور اس وقت لوگوں پر بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے گی. اور جس دوران مصیبت آئے گی مکاشوا 11 کے 2 نبی بھی آئیں گے اور ان کے سامنے خوشخبری کی منادی کریں گے اور وہ 1260 دن تک نبوت کریں گے. سمجھے؟ دیکھیں یہ بالکل اصلی کیلنڈر کے مطابق 1 ماہ کے 30 دن کے حساب سے 3.5 سال بنتے ہیں اور یہ دانیل کے 70 ہفتوں کا بالکل آخری حصہ ہے. سمجھے؟ دیکھیں اب یہاں خدا کا واسطہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. ہرگز نہیں جناب, کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا اور کہا کیا مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے. یہاں کلیسیا میں ایک بھائی ہے جو کہ بڑا پیارا اور بیش قیمت بھائی ہے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل جاؤں. میرا خیال ہے کہ وہاں بڑی بیداری ہے. کسی نے مجھ سے کہا بھائی برہنم آپ کو اس وقت اسرائیل جانا چاہیے, وہ ان کاموں پر غور کریں گے. دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں ٹھیک وہاں کھڑا ہوا اور میں نے سوچا کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اگر ایسا ہے اور یسوع ہی مسیحا ہے, اس نے کہا مجھے اس کو نبی کا نشان پیش کرتے ہوئے دیکھنا ہے کیونکہ ہم اپنے نبیوں کا یقین کریں گے اور ان سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے. یہ کیسی ترتیب ہے؟ میں نے سوچا میں وہاں جاؤں گا, لیکن جب میں اس جگہ کے ٹھیک کافی قریب چلا گیا, خیر میں ابھی قاہرہ میں تھا اور میرے ہاتھ میں اسرائیل کے لیے ٹکٹ تھا اور میں نے کہا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا. اگر وہ ایسا پوچھتے ہیں اور ایک نبی کا نشان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. سٹوک ہوم کلیسیا کے لیوی پیترس نے ان لوگوں کو لاکھوں بائبلیں بھیجی ہیں اور یہودی وہاں آ رہے ہیں, اور آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے اور اس کی ریل یہاں میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے آدھی رات میں 3 منٹ باقی, اور وہ یہودی تمام دنیا اور ہر جگہ سے آ رہے ہیں اور وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور پھر انگلینڈ کا وفد جنرل ایلن بی کی قیادت میں وہاں گیا, اور میرا خیال ہے یہ بات عالمی جنگ عظیم کی 2ری جلد میں ہے, اور ان لوگوں نے یعنی ترکوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اسے اسرائیل کو واپس دے دیا, اور اب وہ ایک قوم کی حیثیت سے ترقی کر رہا ہے. وہ اب ایک مکمل قوم ہے, اس کا اپنا پیسہ, اپنی کرنسی, اپنا جھنڈا, اپنی فوج اور باقی سب کچھ بھی اپنا ہے. سمجھے؟ اور وہ یہودی اپنے آبائی ملک میں واپس آ رہے ہیں. وہ تو پہلی بات جب وہ ان یہودیوں کو لینے کے لیے وہاں ایران گئے اور انہوں نے پوچھا, بلکہ ان سے کہا وہ ان کو اسرائیل میں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں اور ان کو ان کی جگہ دینا چاہتے ہیں, یعنی واپس ان کے ملک فلسطین میں جہاں انہیں ہونا چاہیے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اسرائیلی لوگ اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ خدا کی مرضی سے باہر ہوتے ہیں. ابراہیم کو جس کو وہ زمین دی گئی تھی, اور وہ اس جہاز پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی. ایک بوڑھے ربی نے آگے بڑھ کر کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اسرائیلی اپنے ملک میں جائیں گے تو وہ عقاب کے پروں پر بیٹھ کر جائیں گے, اور وہ ایک جہاز پر سوار ہو کر گھر کی طرف چل دیے. اب یہ قوم وہاں پر ترقی کر رہی ہے اور انجیر کا درخت بحال ہو رہا ہے. آمین. اور داؤد کا پرانا 6 کونوں والا ستارہ لہرا رہا ہے. غیر قوموں کے دن شمار ہو چکے ہیں جو خوف و ہراس کے ساتھ رکے ہوئے تھے, اور اب मुसीबत का वक्त बिल्कुल करीब है और ठीक हम उस मकाम पर खड़े हुए हैं और मोहरें खुल रही हैं और कलीसिया हवा में उड़कर जाने के लिए तैयार है और मुसीबत का वक्त मुकर्रर हो चुका है और इसी दौरान खुदा नीचे आकर 144,000 को निकालेगा। आमीन। इसलिए हो ये मुकम्मल बात है। आप देखें कि मोहरें जो अभी खुली हैं, गौर करें कि इसको कहां लेकर जाती हैं। अब देखें ये उन लोगों के लिए आखिरी 3.5 साल का अरसा है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये वो वक्त है जब खुदा 3.5 सालों के दौरान उन 144,000 को निकालेगा। देखें उसने किसी भी तरह उनके साथ काम नहीं किया, उनके पास कोई नबी नहीं आया और वो नबी के सिवा और किसी का यकीन नहीं करेंगे और आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। चुनाचे वो एक नबी की बात सुनेंगे। जी हाँ जनाब, और बस यही सब कुछ है क्योंकि खुदा ने उनको इब्तदा में एक बात बताई थी और वो ठीक उस पर कायम है। उसने कहा खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे दरमियान में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। मूसा ने ऐसा ही कहा था, उसने कहा तुम उसकी सुनना और जो कोई उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से काट डाला जाएगा। ये दुरुस्त है और आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उनकी आंखें अंधी की गई ताकि वो उसे ना देख सके और इस तरह अंधे होने की वजह से उन्होंने अपने आप को शैतान के सपुर्द कर दिया और उन्होंने कहा वो जादूगर और बालजबूल है, उसका खून हमारी गर्दन पर हो, हम जानते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है। समझे, ये बेचारे लोग अंधे कर दिए गए। यही वजह है कैटमैन का ग्रो और वो तमाम ग्रो वहाँ पीछे हलाक हो गए। उनका हक है कि वो अंदर दाखिल हो, उनके अपने बाप ने उन्हें अंधा कर दिया था ताकि वो हमें हासिल कर सके। तकरीबन कलाम के अंदर ये बात बहुत हैरत अंगेज मंजर पेश करती है। जरा इस पर सोचें कि यहूदी अपने बाप का खून अपने ऊपर ले रहे थे और उनका अपना खुदा वहाँ लटका हुआ था, खून बहा रहा था। देखें वहाँ उन्होंने उसे मसलूब किया, ये बाइबल कहती है। और वहाँ पर चार बड़ी अहम बातें हैं, गौर करें। वहाँ यरूशलम में जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस शहर है, फिर यहूदी लोग जो दुनिया में सबसे मुकद्दस लोग हैं, फिर मसलूब करना यानी जो दुनिया में सबसे ज्यादा इबरतनाक मौत थी, फिर मसीह जो दुनिया में सबसे ज्यादा अहम शख्सियत थी। समझे क्यों ऐसा हुआ, मजहबी लोग और फिर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब और दुनिया के वाहिद सच्चे मजहब के लोग वहाँ खड़े हुए थे और बिल्कुल उसी खुदा को मसलूब कर रहे थे जिसके बारे में बाइबल ने बताया था कि वो आएगा। वो उसे क्यों ना पहचान सके। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था ताकि वो उसे देख ना सके। वो जबकि उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, दूसरे लफ्जों में वो कह रहा था जो कुछ मेरी बाबत पेशनगोई की गई थी अगर मैंने ठीक उसके मुताबिक नहीं किया तो फिर मुझे बताओ। और गुनाह बेतकादी है। उसने ठीक वही किया जो खुदा ने उसे बताया था, लेकिन तो भी वो लोग उसे पहचान ना सके। अब देखें जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये ऐसे ही लगता है जैसे किसी बतख की कमर पर पानी डालना। क्या आप समझ गए कि मेरा क्या मतलब है। ये काबिले अफसोस बात है कि जब आप इस कौम को देखते हैं जिस तरीके से वो काम कर रही है तो ऐसा लगता है ये कितनी अदाब की पाबंद और मजहबी है। लेकिन क्या रूल कदूस ने हमें इसके मुतल्लिक नहीं बताया कि वो डीट तुंज मजाज गुमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे, संग दिल तोमत लगाने वाले, बेजब्त और नेकी के दुश्मन होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। और लिखा है कि ऐसों से किनारा करना। और हम इस मकाम पर हैं और इन तंजीमों ने इसमें खींचातानी कर रखी है और वो तमाम कुवत और जलाल को लेकर उसे रसूलों के साथ और बाकी हजार साला बादशाहत में कायम करते हैं। ये उस आदमी का हाल है जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंसान हमेशा खुदा के किए हुए काम का शुक्रिया अदा करता है और जो कुछ वो करेगा उसकी तरफ निगाह लगाकर बैठा रहता है, लेकिन जो कुछ वो अब कर रहा है उसको नजरअंदाज कर देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, इंसान अब भी वही चीज है। वहाँ यहूदी लोग खड़े हुए ये कह रहे थे खुदा की स्थाइश हो, क्योंकि मुकद्दस सुहाना के छठे बाब में वो कहते हैं हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और यीशु ने कहा उनमें से हर एक मर गया, उन्होंने बियाबान में उस चट्टान से पानी पिया और सब कुछ किया। उसने कहा वो चट्टान मैं हूँ, ये सच है। आमीन। उसने कहा मैं वो जिंदगी की रोटी हूँ जो आसमान से उतरी, मैं ही वो हयात का दरख्त हूँ जो बागे अदन में था, बस अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो वो कभी ना मरेगा बल्कि मैं उसको आखिरी दिन फिर उठा खड़ा करूँगा और वो तब भी उसे पहचान ना सके। ये दुरुस्त है। वही मसीहा वहाँ खड़ा होकर उनके दिल के ख्याल बता रहा था और इस किस्म की दूसरी बातें दिखा रहा था कि मैं ही वो मसीहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मसीहा को करना चाहिए था वो कर रहा था, लेकिन वो अपने हाथों को पीछे बांधे खड़े थे और हाँ कर रहे थे और कह रहे थे ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हरगिज नहीं, वो दुरुस्त तरीके से नहीं आया। देखें, वो बैतलम से आया, वो एक नजायज बच्चे के सिवा और कुछ नहीं है और उसमें शैतान काम कर रहा है और हम जानते हैं वो दीवाना है, वो पागल है, उसमें बुरी रूह है, समझे। लेकिन दरअसल उनकी आंखें इस तरफ से अंधी कर दी गई थी। अब गौर करें, अब देखें, वो अपने नबी की राह देख रहे हैं और वो उसे हासिल करेंगे। अब वो उनमें से दो को हासिल करेंगे, ये दुरुस्त है। अब एक बार फिर देखें, इस तरह जब वो यहूदी, मैं आपको एक छोटा सा निशान दूंगा ताकि आप समझ सकें कि जो यहूदी अब यहाँ मौजूद हैं, वो उठाए जाने के इस तरफ है। गौर करें क्या चीज वाकया होती है, इसकी भी मवासलत पेश की गई है। हम इसको बयान करने पर वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी एक मिसाल है और इसे यकूब की मुसीबत भी कहा गया है। अब ध्यान दें, ये यहूदी जो यहाँ है, तवज्जो दें। हो ये एक, मैं यहाँ थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ ताकि समझ सके, क्योंकि जब मैंने इस बात को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसने मुझे परेशान कर दिया। और समझे, तवज्जो दें, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें और मैं बस यही चाहता हूँ। खैर, मुझे यकीन है खुदा इस बात को आप पर आशकारा करेगा। तवज्जो दें, यकूब के पास पेलोटे का हक था, क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन वो इस सिलसिले में कुछ बददयानत था, समझे। वो वहाँ गया और उसने अपने बाप को धोखा दिया, उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने और बहुत कुछ किया, लेकिन तो भी कानूनी तौर पर वो दुरुस्त था और उसके पास हक था क्योंकि असाऊ ने उसे बेच दिया था। लेकिन तब जब वो अपने ससुर के लिए काम कर रहा था तो उसने पानी के अंदर उन चनार की डालियों को रखा इसलिए कि गाबन बेर बकरियां दारीदार बचे दें। हो इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया। अब तवज्जो दें, अब जरा ध्यान दें, वो अपने लोगों से बाहर था, अब ये यहूदियों की तशबीह है, वो पैसा कमाने वाला था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो किस तरह हासिल करता है, लेकिन वो उसे हासिल करके रहता है। वो उसको हासिल करने के लिए आपकी जीते जी खाल उतार सकता है। अब आप इस बात से वाकिफ हैं और इस मामले में जरा बेअसूल था, इसलिए भाई उसके साथ कोई कारोबार ना करें। भाई वो आपको दबोच लेगा। जी हाँ जनाब, क्यों? उसे इसी तरह होना है क्योंकि इसी किस्म की रूह के जेरे असर था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि असलाकार इस कलाम को समझ ना सके क्योंकि इंसानी रूह उनकी तरफ भेजी गई थी। लेकिन जो कलाम और मुकाशवे को हासिल करता है वो काबी जमाना है। वो तमाम लोग जो इस बात को समझते हैं जरा अपने हाथों को ऊपर उठाए ताकि मैं, ये अच्छा है। अब देखें, अगर आप इन मोहरों में पीछे जाएं और अगर आपने इन्हें हासिल किया है, क्योंकि जैसे ही ये खुली तो आप ठीक तरह देख सके कि खुदा क्या कर रहा है और उसने क्या किया और क्या करने वाला है, और वो ठीक यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि इंसान ने इस तरीके से अमल किया है, क्योंकि वही रूह जिसने उस जमाने के लिए पेशनगोई की थी कि वो उन लोगों पर होगी, इसलिए वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और मैं योहन्ना, पालूस और उन दूसरों के मुतल्लिक सोचता हूँ जिन पर शेर बब्बर की रूह थी, और वो शेर बब्बर LION वहाँ खड़ा था जो कि खुद कलाम था। पालूस ठीक उस कलाम के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारे दरमियान झूठे भाई उठ खड़े होंगे और इधर उधर जाएंगे, और वो तुम्हारे दरमियान तंजीमें और बाकी सब कुछ बनाएंगे, और वो यही कुछ करेंगे, और वो आखिरी दिनों और होलनाक कुवत में से गुजरेंगे। क्यों? इसलिए कि वो एक नबी था और वो कलाम उसके अंदर कायम था, और वो कलाम वहाँ कैसे खत्म हो सकता था जबकि उसने कहा कि तुम्हारे दरमियान झूठे लोग उठ खड़े होंगे और ऐसी बातें करेंगे और ऐसे भाइयों को खींचेंगे जो शागिर्द होंगे। ये बिल्कुल मुखालफ मसीह है और इसने बिल्कुल वही काम किया। गौर करें, जब ये तारीख जमाने में दाखिल हुए ये क्या था? वहाँ ऐसी कोई बात ना थी जो वो कर सकते। रोम हुक्मरान था और उसके पास मजहबी कुवत थी और उसी के पास सियासी कुवत भी थी, और वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे कि सिर्फ जद्दोजहद करें और जिंदा रहें। और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। ये बैल का जमाना था, यही सब कुछ था जो वो कर सकते थे। उनमें इसी किस्म की रूह थी, यानी खुदा की रूह जिसमें बैल जैसी फितरत थी। फिर यहाँ असलाकार आते हैं, एक इंसान का सर जो जहीन और चलाक है, जैसे कि मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और इसी तरह कैल्विन, फेनी, नॉक्स और इन जैसे बाकी लोग हैं जो यहाँ आ गए, और जब इन्होंने ऐसा किया तो वो असलाकार थे और वो असलाकारी करते रहे और आगे बढ़ते रहे और लोगों को बाहर निकालते रहे, और फिर वो घूमकर उसी जगह पर चले गए जहाँ से वो निकले थे और ठीक उसमें वापस जाकर अपने तंजीमी निजाम से शादी कर ली। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाइबल इसी तरह बयान करती है, इसलिए कि वो एक कस्बी थी और उसकी कस्बी बेटियाँ थी ये बात बिल्कुल सच है। खुदा ने कहा कि मैंने उसको तोबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तोबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ हरामकारी करते हैं उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि ये बात खुदा ने इस मोहर के वक्त कही। अब देखें कि वो इसके अंदर है। हमने देखा है कि वो ऐसा करता है और आइंदा भी ऐसा ही करेगा, और उनमें से हर एक इसी तरीके से बढ़ता रहा। लेकिन वो सब जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हैं, खुदा उनको बुलाएगा और वो उसकी आवाज़ सुनेंगे। यीशु ने कहा, मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। इसलिए एक ही काम है जो हमें करना है कि हम बेड़ों को बुलाएं। बकरियां उसकी आवाज़ को नहीं पहचानती, तवज्जो दें, क्योंकि आप बेड़ों की बुलाहट समझते हैं। मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। क्यों? आवाज़ क्या है? मैं आपको बताता हूँ आवाज़ क्या होती है। आवाज़ एक रूहानी निशान है। उसने मूसा से कहा, अगर वो पहले निशान की आवाज़ को ना सुने तो वो दूसरे निशान की आवाज़ को सुनेंगे। मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। जब आखिरी दिनों में ये बातें वाकया होंगी तो खुदा की बेड़े उसकी आवाज़ सुनेंगी। जी हाँ जनाब, समझे? वो पहचानती हैं, मेरी बेड़े मुझे जानती हैं, समझे? वो गैर के पीछे ना जाएंगी और वो हरगिज गैरों के पीछे ना जाएंगी। ये वक्त का तस्दीक शुदा निशान होगा, वो उसे देखेंगे। अब इस बात पर ध्यान दें। अब देखें, जब यकूब वहाँ पहुँचा तो पहली बात आप जानते हैं क्या हुई? उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो वापिस जाए। कहाँ? वापिस अपने अबाई वतन में। हो, बिल्कुल यही बात है जो इसराइल ने की। यही है, यही इसराइल है और यकूब ही इसराइल है। आप जानते हैं उसका नाम तब्दील हो चुका था, समझे? और वो वहाँ गया और उसने वहाँ जिस कदर दौलत जमा कर सकता था उसने दौलत जमा की, अपने रेवड़ों और दूसरी चीजों के जरिए से, जिस भी तरीके से वो कर सकता था उसने दौलत जमा की। बस उसने धोखा दही, चोरी, झूठ बोलने, गर्ज के जिस भी तरीके से वो दौलत जमा कर सकता था उसने जमा की, समझे? उसने ऐसा किया। और फिर जब उसने घर की तरफ जाना शुरू किया तो उसके दिल में अपने घर के लिए उदासी पैदा हुई। लेकिन जब उसने वापस जाना शुरू किया तो रास्ते में जाते हुए उसकी मुलाकात खुदा के साथ हुई, फिर उसका नाम तब्दील कर दिया गया, समझे? लेकिन उस वक्त वो आजीज हो चुका था क्योंकि वो डरता था कि ईसाऊ उसके पीछे पड़ा हुआ है, समझे? और अब दौलत कमाने का मसला देखें, यानी दौलत के कारोबार को आगे बढ़ाने पर गौर करें। किस तरह यहूदी लोग रोम के साथ ऐद बांधेंगे, गौर करें, ताकि अपनी दौलत के कारोबार को आगे बढ़ाएं। इस बात पर गौर करें, उस वक्त ईसाऊ को उसकी दौलत की जरूरत नहीं थी और ना अब रोम को इसकी जरूरत है, क्योंकि रोम के हाथ में सारी दुनिया की दौलत है, समझे? लेकिन इसने ये काम ना किया। हम ये बात जानते हैं कि इसराइल जब उसका नाम याकूब था तो वो उस मुसीबत में फंसा हुआ था और उसने खुदा के साथ कुश्ती की और कोई ऐसी चीज पकड़ी जो कि हकीकी थी। वहाँ एक शख्स था, यकूब ने अपने हाथ उसके गिर्द डाल दिए और वो वहाँ ठहरा रहा और उस हस्ती ने कहा, अब मुझे जाने दे क्योंकि दिन निकल रहा है। ओ, वो दिन निकलने का वक्त था, समझे? और अब भी दिन निकलने वाला है। लेकिन यकूब ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू नहीं जा सकता, मैं भी तेरे साथ ठहरा रहूंगा, समझे? मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ बदल जाएं। ये दौलत की तजवीजें और इसी तरह की दूसरी तजवीजें बनाने वाले 144,000 का ग्रोह है। जब वो सच्चाई को देखेंगे तो वो हकीकी चीज को काबू कर लेंगे और वहाँ मूसा और एलिया खड़े होंगे। आमीन। वो खुदा के साथ उस वक्त तक कुश्ती करेंगे जब तक इसराइल के कबीलों में से 144,000 बाहर ना निकाले जाए। ये वाक्या मुसीबत के शुरू होने से थोड़ी देर पहले होगा। गौर करें, ओ ये किस कदर उम्दा है। इसी तरह ये यकूब की मुसीबत का दिन है। यही वो वक्त है जब 144,000 को बाहर निकाला जाएगा। वो मुनाद, यानी वो दो नबी उनके सामने इस तरह मुनादी करेंगे जिस तरह योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की। आसमान की बात से नजदीक आ गई है, ऐ बनी इसराइल तोबा कर। किस चीज से तोबा? अपने गुनाहों और अपनी बेतकादी से तोबा करो और वापस खुदा की तरफ मुड़ आओ। अब देखें, यहाँ हमें एक और बात को याद रखना चाहिए। वो बड़े बड़े हादसात और निजामे कुदरत पर वाकया हुए इससे कबल वकु में आए। देखें, इस जगह 12वीं आयत में सूरज कंबल की मानिंद काला हो जाता है। अब इसका मुवाजना करें। अब इस बात को याद रखें कि ये बातें गैर कौमों पर वाकया नहीं हुई बल्कि इसराइल पर वाकया हुई। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अब याद रखें कि मैंने कहा कि ये 144,000 का बुलाया जाना है, समझे? और ये तमाम काम मसीबतों के जरिए पाए तक मिल तक पहुँचेंगे और ये यहाँ बताया जा रहा है जो इस मसीबत के अंदर होगा। अब आए खुरूज 10 और उसकी 21 ता 23वीं आयत में चले और वहाँ निगाह डालें। बेशक जब उस खुरूज में बनी इसराइल को बाहर निकाला जाना था, खुरूज 10वां बाब और उसकी 21 ता 23वीं आयत। जब मैं ये बातें लिखता हूँ तो मैं इस कदर जोर से चिल्ला उठता हूँ और जज्बात से भर जाता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं इनको आपस में मिला बैठता हूँ। ठीक है, अब खुरूज 10 और 21 था 23वीं। ठीक है, आए हम 21 और 23 को पढ़ते हैं। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तहरीकी रही। समझे, 3 दिन तक ना तो किसी ने देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर बने इसराइल के मकानों में उजाला था। ध्यान दें, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जरा यहाँ आएं और देखें, सूरज कंबल की मानित काला सा हो गया। गौर करें, बिल्कुल वही चीज रूनमा हुई, कायनात में वही हादसात रूनमा हुए। ये क्या था? इससे क्या होता है? जब कुदरत कायनात में इस तरह की तब्दीलियां पैदा करती है तो खुदा इसराइल को निकाल रहा होता है। समझे, खुदा इसराइल को बाहर निकाल रहा होता है। अब देखें, सूरज कंबल की मानित काला हो गया। अब देखें, खुदा इसराइल को छुड़ाने के करीब था। ठीक है, और उस वक्त वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ से जो कि मिस्र था छुड़ाने वाला था। और अब यहाँ वो इनको रोम के हाथ से जिनके साथ इन्होंने अहद बांधा था छुड़ाएगा। बिल्कुल वही चीज वाकया हुई। ये आफते हैं और ये आफते नाजल होंगी। ये परेशानी उस गैर कौम के ग्रोह के साथ होगी। अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं आपको बताता कि गैर कौम की कलीसिया पर क्या कुछ गुजरने वाला है। बाइबल बयान करती है कि उस अजदहा शैतान को उस औरत पर गुस्सा आया, यानी उन यहूदियों इसराइलियों पर गुस्सा आया और उसने अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, यानी लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रोह जो उस औरत के बकिया से जंग करने को निकला। शायद ये मुकाशवा 13 में है। अब वहाँ गौर करें, ये हमारे पास है और ये उस वक्त होगा जब इसराइल उससे, बल्कि मेरा मतलब है जब रोम अपनी फौज उस औरत के बकिया से जंग करने के लिए भेजेगा। अब तवज्जो दें, पहली बार जब वो अपने दुश्मन के हाथ में थे और उसने उन्हें छुड़ाकर बाहर निकाला तो सूरज कंबल की मानिद हो गया, पर अब ये दूसरा मौका है और ये मुसीबत का दौर होगा, ये खात्मा होगा। अब देखें, दानियल 12वां बाब, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम इसको पढ़ते। दानियल और उसकी 12वीं आयत, बल्कि 12वां बाब, जहां दानियल ने कहा हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। अब याद रखें, दानियल इस वक्त की बाबत बात कर रहा है जब ये बात वाकई होगी, जब इसराइल के छुड़ाए जाने का वक्त नजदीक होगा और जब 70वें हफ्ते का आखिरी हिस्सा पूरा होने को होगा, यही वो वक्त होगा जब वो छुड़ाए जाएंगे। अब तवज्जो दें, अब आए जरा सिर्फ एक मिनट के लिए दानियल के 12वें बाब को पढ़ते हैं। और उस वक्त मैकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फरसंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। गौर करें, ये यहूदी हैं और ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक्वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। अब इसका मुकाबला जो कुछ यीशु ने मत्ती 24 में कहा है उससे करें कि वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक्वाम से उस वक्त तक कभी नहीं हुआ। इस छठी मोहर के अंदर देखें, गौर करें, बिल्कुल वही बात है, यानी मुसीबत का वक्त है। तवज्जो दें कि इब्तदाई अक्वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ और उस वक्त तेरे लोगों में से, अब देखें इस 70वें बल्कि इस 7वें साल के आखिरी से में हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। आप गौर करें, वो जो पहले से चुने गए हैं और उनके नाम बरा की किताबे हयात में लिखे गए हैं, वो उस वक्त निजात पाएंगे और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दि के लिए और बाज रुस्वाई और जिलते अब्दि के लिए। और अहले दानिश नूरे फल की मानित चमकेंगे और जिनकी कोशिश से वह तेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। और इसके बाद दानियल को कहा गया कि किताब को बंद कर दे, क्योंकि वो अपनी मेराज के साथ आराम करेगा। अब देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हो या कि मुर्दा, आप किसी भी तरह जी उठेंगे, समझे? फिक्र मत करें, इसलिए कि मसीहों के लिए मौत कोई मायने नहीं रखती है, वो किसी भी तरह नहीं मरते हैं, समझे? अब दानियल 12 में देखें, जहाँ लिखा है हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा वो निजात पाएगा। यहाँ खुदा अपने दूसरे बेटे इसराइल को मुसीबत के बाद छुड़ाने वाला है। देखें, इसराइल को दूसरी मर्तबा, जो कि उसका बेटा है, आप इस बात से वाकिफ हैं, इसराइल खुदा का बेटा है। चुनाचे जिस तरह उसने उसे मिस्र से छुड़ाया, बिल्कुल उसी तरह वो उसको यहाँ मुसीबत के वक्त में भी छुड़ाएगा। अब आए यहाँ एक बार फिर रुके और कुछ मजीद देखते हैं। सो इससे कब्ल के हम इन्हें घर में लाएं, अब यहाँ तो जो दे उन दो नबियों को देखें कि अब क्या करने वाले हैं, जिस तरह मूसा और उन नबियों ने किया। और मुझे नापने के लिए एक लकड़ी दी गई, 11वें बाब की 3री आयत में लिखा है, और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के दो दरख्त हैं। आपको जरबाबल और इस तरह के लोग याद हैं जो हैकल को दोबारा तामीर कर रहे थे, और दो चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंत के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर, आपको याद है मसीह के मुंह से तलवार यानी कलाम निकलता है, उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर ही इस तरह मारा जाएगा। अब हम इस आग को जानते हैं, 19वें बाब में जब मसीह की आमद होती है तो उसके मुंह से तलवार निकलती है जो कलाम है। क्या ये बात दुरुस्त है? कलाम मुकद्दस, ओ काश आप इस मवाद को कल रात की मोहर के लिए जमा कर सके। देखें, कलाम ही एक ऐसी चीज है जिससे खुदा अपने दुश्मनों को हलाक करता है, समझे? अब यहाँ तवज्जो दे, जब वो नबी वहाँ नबूवत करते हैं तो उन्हें अगर कोई शख्स उनके साथ बुरा सलूक करता है और उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उनके मुँह से आग निकलती है, पाक रू की आग यानी कलाम निकलता है। कलाम खुदा है, कलाम आग है और कलाम रूह है, समझे? उनके मुंह से आग निकलती है। मूसा पर निगाह डालें, आए देखें उसके मुंह से क्या निकलता था। इसराइली लोग जब वो जा रहे थे उस वक्त वो उनके साथ क्या सलूक कर रहे थे? दरअसल मेरा मतलब है कि जब मिस्री लोग उन यहूदियों के साथ नाजेबा सलूक कर रहे थे, मूसा वहाँ था। खैर, वो लोग उनको जाने नहीं देते थे, फराउन इस बात की इजाजत नहीं देता था। खुदा ने मूसा के मुंह में कलाम डाला। देखें, ये खुदा के ख्यालात थे जो उसने मूसा के दिल में डाल दिए, और वो उसको जाहिर करने के लिए जब वो वहाँ गया तो फिर वो कलाम बन गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मच्छर आ जाएं, और मच्छर आ गए। अब यहाँ गौर करें, और अगर कोई उन्हें जर पहुँचाना चाहता है तो उनके मुँह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाती है। देखें, ये इस तरह है, वो जो चाहे बोल सकते हैं और वो वकू में आ जाता है। आमीन। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। भाई, खुदा यहाँ मंजर पर जाहिर हो जाता है। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे। एलिया वो जानता है ये काम किस तरह करना है, क्योंकि वो ये काम पहले कर चुका है। आमीन। मूसा भी जानता है कि ये काम किस तरह करना है, क्योंकि वो भी पहले ऐसा कर चुका है। यही वजह है कि उन्हें इस काम के लिए रखा गया है। अब देखें, आमीन, मैं यहाँ कुछ अजीब बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बेहतर है कि कल रात तक इसे पास ही रखूँ, समझे? ठीक है। उनको पानियों पर इख्तियार है तो उन्हें खून बना दे और जितनी मर्तबा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। ये क्या है? ये बातें कलाम के अलावा और कौन सी चीज कर सकती है? वो जितनी मर्तबा चाहे कुदरती काम कर सकते हैं। यहाँ यही बात है, ये वही है जो छठी मोर में रूनमा होते हैं। वो इस पर से पर्दा उठाकर इसको खोल रहे हैं। ये कायनात को धर्म बरम करने के लिए खुदा की कुदरत है। देखें, छठी मोहर मुकम्मल तौर पर कायनात में खलल पैदा कर देती है। क्या अब आप इस बात को समझ गए हैं? ये आपकी मोहर है, इसे कौन करता है? ये नबी हैं जो दुल्हन के उठाए जाने के बाद जाहिर होंगे। वो खुदा की कुव्वत और खुदा के कलाम के साथ कायनात को धर्म बरम कर देंगे। वो जलजले ला सकते हैं, वो चांद को खून बना सकते हैं, वो सूरज को गुरूब कर सकते हैं, और वो जो कुछ चाहेंगे उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। आमीन। यहाँ हैं आप, यहाँ हैं। समझे, गौर करें ये मोहरे कलीसियाई जमानों में किस तरह खुली और कैसे इन्होंने शहीदों को जाहिर किया। और यहाँ वो दो नबी हैं जो खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं ताकि वो कायनात के साथ जो सलूक भी करना चाहे करें। उन्होंने जमीन को हिला दिया। ये बात वाज़े तौर पर जाहिर करती है कि ये कौन कर सकते हैं। ये मूसा और एलिया हैं, क्योंकि वहाँ एक मर्तबा फिर इन दोनों अशकास की खिदमत दोहराई जानी है। ओ मेरे खुदाया, क्या अब आप इसे देखते हैं? देखा छठी मोहर क्या है, ये वो नबी हैं। अब तवज्जो हो, कहीं ये बात आपके दम को रोक ना ले। लेकिन गौर करें, इस मोहर को किसने खोला? नबियों ने, समझे? आमीन, यहाँ है आप। ओ भाई, हम उकाब के जमाने में हैं, बादलों के दरमियान सर उठाए हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने छठी मोहर को खोला, उनके पास ऐसा करने का इख्तियार था। आमीन, यहाँ आपकी छठी मोहर खुल रही है, समझे? अब हमने पीछे इस बात को वहाँ छोड़ा था जहाँ यस्सू ने कहा था कि ये वकूम में आएगा। बहुत पीछे पुराने यदनामे में हिजकेल के अंदर गजिश्ता दौर के नबियों ने भी इसका जिक्र किया था कि ये वकूम पजीर होगी। और अब यहाँ छठी मोहर खुली है और बता रही है कि ये एक वेद है। ठीक है, इसने क्या किया? और इसका राज अंबिया है, क्योंकि बाइबल ने यहाँ यही कहा है। वो इसे खोलते हैं और किसी भी वक्त वो कायनात के साथ जो सलूक करना चाहे कर सकते हैं। और जो कुछ उन्होंने किया वही इन नबियों ने किया। आमीन, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे किस तरह किया गया था। आमीन। स्ताइशो, जब मैंने इसको देखा तो मैं अपनी कुर्सी से उठा और फर्श पर इधर उधर चलने लगा। मैंने दिल में कहा, ए खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये यहाँ है, ये ऐसे है, इन्होंने इस छठी मोर को खोला। आमीन। अब उनकी तरफ देखें, अगर कोई उनको जर पहुंचाता है तो उनके मुंह से आग निकलती है, यानी कलाम निकलता है। आप गौर करें, जब रसूलों पर रूह कुदस नाजिल हुआ तो उनके मुंह से आग निकली। अब मुकाशवा के 19वें बाब में हम बिल्कुल यही चीज देखते हैं कि उसके मुंह से एक बड़ी तलवार निकलती है, यानी कलाम, समझे? मसीह आ रहा है और उसने अपने दुश्मनों को उसके साथ हलाक किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अब वो अपनी राह पर है, उसकी तरफ देखते रहे। ठीक है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे ताकि उनकी नबुवत के जमाने में पानी ना बरसे। जवानों, ये कायनात में खलल पैदा करना है। अब देखें, उस शख्स एलिया ने कितनी देर तक आसमान को बंद रखा। अब ठीक यहाँ पर है। और दानियल के 70वें हफ्ते का आखिरी हिस्सा कितना लंबा होगा? आप ठीक यहाँ पर हैं। मूसा ने क्या किया? उसने पानियों को खून बना दिया और ऐसे तमाम मौजजात किए जिनकी छठी मोहर के अंदर पेशनगोई की गई है। और अब यहाँ वो मुकाशवा 11 में बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस में तीन मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर इन चीजों को बाहम इकट्ठा किया गया है और यही छठी मोहर का खुलना है। ये ठीक वहाँ मौजूद है। आमीन, जलाल हो। अब गौर करें, उनके पास आसमान बंद करने का इख्तियार है ताकि उनकी नबुवत के जमाने में जमीन पर पानी ना बरसे। और पानियों पर इख्तियार है कि उनको खून बना दे और जितनी मर्तबा चाहें जमीन पर आफतें नाजिल करें। हो मेरे खुदाया, आप यहाँ पर हैं, देखें और जरा आफतों पर गौर करें। इस छठी आफत में तमाम कायनात धर्म बरम हो जाती है, बल्कि इस छठी मोहर के खुलने पर धर्म बरम हो जाती है। और ठीक यही है जो वकूम में आया। और अब ध्यान दें, यहाँ खुदा अपने बेटे इसराइल को छुड़ाने वाला है, बिल्कुल उसी तरह की मुसीबतों से जो उसने वहाँ नाजिल की। वहाँ उसने मूसा को भेजा और इसराइल को निजात दी। क्या ये बात दुरुस्त है? और यहाँ भी उसने बिल्कुल वही काम किए। जब उसने एलिया को अखियब के पास भेजा तो 7,000 बाहर निकले। क्या ये बात दुरुस्त है? अब फिर उनको मुसीबत के दौर में वापस भेजकर 1,44,000 को बाहर निकालता है। अब देखें, बल्कि आप गौर करें कि उनके दरमियान छठे बाब के दरमियान या फिर छठी आफत या मोहर, बल्कि मुझे माफ करें, बल्कि छठी और सातवीं मोहर के दरमियान इल्मे रियाजी के एतबार से मुकाशवा 7वां बाब बिल्कुल तरतीब से लिखा गया है। बिल्कुल जैसे अमरीका का नंबर 13 है, ये 13 रियासतों से शुरू हुआ और इसके झंडे में 13 सितारे हैं, 13 आबादियां हैं और 13 धारियां हैं। गर्ज के हर एक चीज 13-13 है और ये ठीक मुकाशवा के 13वें बाप में जाहिर होता है। ये सच है, इसका अदद 13 है और ये एक औरत है। अब देखें, जो उसका इकलौता बेटा था और वो अपने इकलौते बेटे को छुड़ाने वाला था। यकूब भी उसका बेटा है क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा है। आए मत्ती 27 में देखें उसने क्या किया। अब मत्ती 27वां बाप है। अब याद रखें, उसके बेटे को पीटा गया और उसे दुख दिया गया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और वो जुमे के रोज तकरीबन 3 बजे बाद अज दोपहर सलीब पर लटका हुआ था ताकि उस मकाम को हासिल करे। मत्ती का 27वां बाप और उसकी 45वीं आयत, मुझे यकीन है कि यही है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अब तवज्जो दें कि ये बिल्कुल वैसे ही है जो उसने यहाँ मुकाशवा में किया, समझे। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। देखें, तारीकी और अंधेरा, इसी तरह मिस्र में तारीकी और अंधेरा खुदा यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने से पहले सलीब पर चढ़ा रहा था। पहले क्या था? तारीकी, सूरज दिन के दरमियानी हिस्से में गुरूब हो गया और सितारों ने चमकना छोड़ दिया। और इसके 2 दिन बाद वो उसको एक जबरदस्त फतह के साथ जिंदा करने वाला था। जब मुल्के मिस्र में सूरज और चांद और सितारों और दीगर सब चीजों पर हादसात गुजर चुके तो उसने बनी इसराइल को माउदा मुल्क के लिए आजाद किया। और यहाँ पर भी मुसीबत का वक्त है और यहाँ वो 2 नबी खड़े हैं जिनका उस कलाम पर इख्तियार है जो खुदा उनको देता है, क्योंकि वो सिर्फ वही कह सकते हैं जो कलाम खुदा उन्हें देता है। अब देखें, वो खुदा तो नहीं थे लेकिन वो आरजी तौर पर और अमली तौर पर खुदा थे, क्योंकि यस्सू ने कहा वो थे। उसने कहा, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा क्योंकि उनके पास खुदा का कलाम आया। बस गौर करें, ये वही हैं जिन्हें खुदा अपना कलाम देता है और जब वो कलाम करते हैं तो फिर वो काम होकर रहता है। बस यही सारी बात है। और यहाँ वो खुदा के इख्तियार के साथ है ताकि जमीन को मारे और जो चाहे वो करे। वो मेरे खुदाया, आसमानों को बंद कर दे, और वो ऐसा करता है। बात क्या है? वो 144,000 को मखलसी की किताब से मखलसी के लिए बाहर निकाल रहा है, और ये छठी मोहर में मखलसी की मोहर के तहत है। मेरे अजीज दोस्तों, ये इसी तरह है। यही वो छठी मोहर है जो इस कदर बेद बनी रही। तो आए हम जरा मजीद 10 मिनट का और वक्त लेते हैं। आए थोड़ा सा और वक्त लेते हैं और देखते हैं। मेरे पास तकरीबन 2 या 3 सफ़े और मौजूद है। खैर, मेरे पास ये मौजूद है। आप यहाँ इस जगह देख सकते हैं। मेरा ख्याल है इस जगह पर तकरीबन एक, बल्कि मेरा ख्याल है मेरे पास तकरीबन 15 सफ़े मजीद बाकी हैं जो मैंने खत्म करने हैं। हो, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे खुदाया, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मुझे डर है अगर मैं इसे ज्यादा फैलाऊंगा तो ये आपको परेशान कर देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए जिस तरह मुझे करना चाहिए वैसे मैं इसको पकड़कर नहीं रख सकता। आए इसे यसाया में देखते हैं। यसाया नबी ने इस छठी मोहर को खुलते देखा और इसका जिक्र किया, इसलिए ये अहम है या फिर नहीं है, समझे। खैर, सारा मंसूबा यानी मखलसी का सारा मंसूबा इन मोहरों की किताब के अंदर मौजूद है। अब याद रखें, हमने देखा कि यीशु ने इसे देखा। क्या ये बात दुरुस्त है? यीशु ने इसे देखा, और अब हम जानते हैं कि दूसरे लोगों ने भी इसे देखा। और हम देखते हैं कि इसकी मिसाल यकूब के साथ भी मिलती है, और हम देखते हैं कि इसकी मिसाल मिस्र के साथ भी मिलती है, और फिर हम देखते हैं इसकी मिसाल सलीब के साथ भी मिलती है। आए अब हम वापस यसाया की जानिब चलते हैं। मैंने और भी बहुत से नबियों को लिख रखा है, आए जरा देखें। लेकिन मुझे यहाँ यसाया की ये बात पसंद है। आए वापस यसाया में चलते हैं, यानी यसाया के 13वें बाब में चलते हैं। मुझे ये पसंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि यसाया की किताब बजाते खुद एक मुकम्मल बाइबल है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? देखें, यसाया तख्लीक से शुरू करता है और किताब के दरमियान में वो यूहन्ना को लाता है और आखिर में 1000 साल बादशाही को लाता है। और बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं और यसाया की किताब में 66 अबवाब हैं। ये बजाते खुद एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। अब यसाया के 13वें बाब पर ध्यान दें। आए छठी आयत से शुरू करते हैं। अब तुम वावेला करो क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है। वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिंद आएगा। देखे, अब यहाँ छठी मोहर खुल रही है। इसको मसीह की आमद से 713 साल कब्ल ठीक डोरी से बांधा गया और उसे अब यहाँ तकरीबन 2000 साल का अरसा होने को है, जिसका मतलब है कि इसको तकरीबन 2700 साल बीत गए हैं। गोया यसाया ने इस मोहर को वहाँ लटकते हुए देखा। ठीक है, इसलिए सब हाथ ढीले होंगे और हर एक दिल पिघल जाएगा। और यीशु ने क्या कहा था? और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और लोगों के दिल खौफ से और समुन्दर की मोजों के शोर की वजह से घबरा जाएंगे। देखें, लोगों के दिल घबरा जाएंगे और वो हरासा होंगे, जान कनी और गमगीनी उनको आ लेगी और वो ऐसे दर्द में मुब्तला होंगे जैसे औरत जे की हालत में। वो सरासीमा होकर एक दूसरे का मुंह देखेंगे और उनके चेहरे शोला नुमा होंगे। ओ जरा इस बात पर तवज्जो दें, उनके चेहरे शोला नुमा होंगे। सिर्फ एक मिनट के लिए इस बात को देखते हैं जो हमने ली है। देखें, मैं इसी को पकड़े हुए हूँ। देखो, खुदावंद का वो दिन आता है जो गज़ब में सख्त तरश्त है, ताकि मुल्क को वीरान करे और गुनाहगारों को उस पर से नेस्तो नाबूद कर दे, मुल्क को और उसके सब कुछ को। आप समझे? तवज्जो दें, क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकिब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तुलू होते होते गुरूब हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उनकी बदकरदारी की सजा दूंगा, और मैं उनको मैं नहीं जानता कि इसका तलफ़ुज़ कैसा है। ये देखें, ये तलफ़ुज़ अदा नहीं कर सकता। और मैं मगरूरों का गुरूर नेस्त और अहबत नाक लोगों का घुमंड पस्त करूंगा। देखे, वहाँ यसाया ने बिल्कुल वही चीज देखी जिसका जिक्र यीशु ने किया। फिर सातवीं मोहर का जाहिर होना है जब वो मुसीबत के जरिए जमीन को साफ कर रहा है, तो ये मुसीबत का दौर है। और ये छठी मोहर है। जी हाँ, वो एक नबी था, इसलिए खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, और ये 2700 साल पहले की बात है। यकीनन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया, जैसा कि यसाया ने यहाँ कहा कि वो एक औरत की तरह दर्दे जे की हालत में मुब्तला होगी। तमाम मखलूकात दर्दे जे की हालत में है। ये दर्दे जे और ये सब रोना और चिल्लाना क्या है? ये एक 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 ऐसी औरत की मानिंद है जो माँ बनने को हो। बजाते जमीन खुद फितरत है। क्यों ये शहर? आए हम जरा अपने शहर को लें, जबकि दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी शराब नोशी, असमत फरोशी, गंदगी और इसी तरह का फजला मौजूद है। क्यों? मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतर है कि खुदा इसे 1000 साल पहले की तरह देखना चाहता है, जब दरियाए ओहायो नीचे की तरफ बहता था और आबादियों में कोई सैलाब या पानी वगैरह नहीं आता था और वादी में कोई गुना नहीं था। यहाँ भैंसे घुमा करती थी और पुराने चेहरे को कबीले यहाँ शिकार के लिए आते थे और मुहज्जब तरीके से जिंदगी बसर किया करते थे और किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो ही लोग आए तो गुनाह भी अंदर घुस आया, क्योंकि जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे तो गुनाह और तशद्दुद भी शुरू हो गया। और हमेशा जब आदमी बढ़ते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। क्यों? मेरा ख्याल है ये बेइज्जती की बात है। हाल ही में एक दिन मैं अपने मौजूदा अबाई शहर एरिजोना में खड़ा हुआ था और एक बात याद आई। उस वक्त मैं एक बच्चा ही था जब मैंने जेरोनिमो और कोई चीज और उन कदीम अपाची कबीलों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने वहाँ उन लोगों के दरमियान मुनादी की थी। वो बहुत अच्छे लोग हैं, और अगर आप दुनिया में बाज अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं तो उनमें वो अपाची इंडियन लोग भी शामिल हैं। और मैं कब्र की उन लोगों के पास भी गया हूँ जहाँ उनके जंगली खंडरात और जंग के वक्त की भी चीजें मौजूद हैं, और मैंने देखा। आपको इल्म है कि वो लोग हमेशा वो जेरोनुमो को हमेशा तारिकुल दीन का दर्जा देते हैं, लेकिन मेरे नजदीक वो कतई सुर्ख रंग अमेरिकन है। यकीनन वो सिर्फ अपने हकूक के लिए जंग कर रहा था, जिस तरह किसी को करना चाहिए। वो अपनी सरजमीन में इस तरह की गलाजत नहीं चाहता था। लेकिन अब देखें, ये क्या है? इस गलाजत ने उसके बच्चों और उसकी बेटियों को कस्बियां और ना जाने क्या क्या बना दिया है, क्योंकि सफेद नस्ल के लोग अंदर घुस आए हैं और सफेद आदमी दगाबाज हैं। इंडियन एक कदामत पसंद था और वो एक तहफ्फुज पसंद था, और बाहर जाकर एक भैंसे का शिकार करता था और जो कुछ होता था उसको सारा कबीला खाता था। वो खाल को कपड़ों और खेमों और दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन सफेद फार्म लोग आकर निशानाबाजी की खातिर उस पर गोली चलाते हैं। ऐसा क्यों है? یہ کسی حد تک بے قدری ہے۔ میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا ہے کہ افریقہ میں، جو کہ شکار گاہوں سے بھرا ہوا ملک ہے، وہاں آرتھر گارڈز اور بہت سارے ایسے لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاتھیوں اور دوسرے جانوروں کا شکار ہیلی کاپٹر اور ایسی ہی دوسری چیزوں سے کریں۔ اس میں ایک ماں ہاتھی کی تصویر تھی جو مر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے منہ پر آ رہے تھے، اور وہ دو بڑے نر ہاتھی اس مادہ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ایک گناہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں ایک میدان میں کھڑا تھا جہاں میں اکثر شکار کھیلا کرتا تھا، اور میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سفید فام لوگ آ کر ہرنوں کا شکار کرتے تھے اور ان کے جسم کا پچھلا حصہ کاٹ لیتے تھے، اور بعض اوقات وہ 8 یا 10 مادہ ہرنوں کا شکار کر کے ان کو وہیں پڑا رہنے دیتے تھے، اور ان کے چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگتے تھے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ شکار کرنا ہے؟ لیکن میری کتاب میں یہ خالصتاً قتل ہے۔ میرا خیال ہے کہ کینیڈا میں ان جیسے آوارہ امریکیوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کوئی سڑک نہیں بنائی، کم از کم جب تک میں وہاں تھا اس وقت تک تو کوئی نہ تھی۔ یہ درست ہے، جہاں تک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ لوگ اس کھیل میں بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ اب سب کے سب تو نہیں، کیونکہ کچھ حقیقی شکاری بھی ہیں، لیکن آپ مشکل سے 1000 میں سے ایک کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر نشانہ لگا سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تو بھی یہ قتل ہے، یہ سچ ہے۔ پھر ایسے شخص کے اندر دل نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر موسم کے گولی چلاتا ہے۔ خیر، جب میں ان ہدایت دینے والوں میں سے ایک کے ساتھ الاسکا میں تھا، اس نے کہا کہ میں اوپر، میں ابھی وہاں جاؤں گا اور ان ہرنوں کے ایک بہت بڑے گلے کو دیکھوں گا۔ ہرن نہیں بلکہ وہاں 12 سنگے گرے پڑے تھے، اور ایک جہاز کے ذریعے ان 12 سنگوں کے گلے پر ان کے سنگوں کے اندر الاسکا کے امریکن جہاز والوں نے بور کی مشین گن سے گولیاں چلا دی تھی۔ یہ خالص قتل ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر وہ بینسوں کو مار دیں گے تو وہ انڈین لوگ فاقوں میں چلے جائیں گے اور وہ فاقوں سے مر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے تمام سرداروں اور اپنے بچوں اور اپنے تمام باقی لوگوں کو اور اپنے آپ کو ان کے تابع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ فاقوں سے مرنے لگے تھے۔ وہ قبیلوں میں بینسوں کے متعلق بہت باری مسودہ قانون لے کر ان میدانی لوگوں کے پاس چلے گئے، اور ایک ہی دوپہر کو ان تمام بینسوں میں سے 40 یا 50 کو گولی سے اڑا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے جانوروں سے خلاصی مل گئی تو انہیں انڈین لوگوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ میرے خدا ہے، جس طرح سے انہوں نے انڈین لوگوں سے سلوک کیا ہے، وہ جھنڈے پر ایک دبا ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے جب خدا ان لوگوں کو برباد کر دے گا جنہوں نے زمین کو برباد کیا ہے، اور پوری دنیا اس زمرے میں ہے۔ ان تمام وادیوں پر نگاہ ڈالے۔ کسی روز میں وہاں کھڑا ہوا فینکس کی وادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جنوبی پہاڑ کی طرف گیا، میں اور میری بیوی وہاں بیٹھ کر فینکس کی وادی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، کیا یہ خوفناک بات نہیں ہے؟ اس نے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے، کیا خوفناک ہے؟ میں نے کہا، وہ گناہ ہے، اور اس 140,000 یا 150,000 یا شاید 2,00,000 لوگوں کی آبادی میں، یعنی اس وادی میں کس قدر زناکاری، شراب نوشی اور لعنت ہے، اور خداوند کا نام بے فائدہ لیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، 500 سال یا پھر 1,000 سال گزرے ہیں کہ یہاں تھور کے درختوں اور پھلی دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، جہاں بوڑھے بھیڑیے دریا کی ریت پر اوپر نیچے بھاگتے اور نہاتے تھے۔ اور میں نے کہا، خدا نے اسے اسی طرح بنایا تھا۔ لیکن پھر انسان اندر آ گیا، اور اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے زمین کو گندگی سے بھر دیا۔ گلیاں غلاظت سے بھری ہیں، اور نالیاں اور دریا گندگی سے آلودہ ہو گئے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے اس پانی میں سے ذرا سا بھی نہ پئیں، ورنہ آپ کو کچھ ہو سکتا ہے، سمجھے؟ اس پر نگاہ ڈالیں، نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں سب کچھ آلودہ ہو چکا ہے۔ اب دنیا اور فطرت کو دیکھیں، خدا رحم کرے، پوری دنیا درد زے میں مبتلا ہے، اور دنیا تکلیف اٹھا رہی ہے، اور یسعیاہ کہتا ہے وہ درد زے میں تڑپ رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس حالت میں مبتلا ہے، وہ ایک نئی دنیا کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی 1,000 سالہ بادشاہی، جہاں پر نئے لوگوں کے لیے ایک نئی دنیا کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں نہ گناہ ہوگا اور نہ وہ آلودگی ہوگی۔ یہ سچ ہے، وہ درد زے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم درد زے میں ہیں، تاکہ مسیح دلہن کے لیے آئے۔ ہر چیز درد زے میں ہے اور تڑپ رہی ہے۔ غور کریں، کچھ ہونے والا ہے، یہ چھٹی آفت اس کو آگے جانے کا راستہ دے رہی ہے۔ بھائی، بونچال آ رہے ہیں اور ستارے ہلائے جا رہے ہیں، اور آتش فشاں پھوٹ رہے ہیں، اور زمین اپنے آپ کو نیا بنائے گی۔ زمین کے مرکز سے नया लावा फूट निकलेगा और जब वो चारों तरफ चक्कर पर चक्कर खाएगी और वो वहाँ पर घूमेगी तो वो रेजा रेजा हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक सुबह जब यीशु और उसकी दुल्हन जमीन पर वापस आएंगे तो वहाँ खुदा का फरदोश होगा, ओ मेरे खुदाया, जैसा कि उस वक्त वो पुराने जंगजू अपने दोस्तों और अपने अजीजों के साथ चलते हुए आएंगे और फरिश्तों के लश्कर के साथ कौमी तराना फिजा को मामूर कर देगा। हो और वो वक्त खूब होगा जब कहेगा, ऐ मेरे अच्छे और वफादार खादम, अपने खुदावंद की खुशी में शरीक हो क्योंकि ये तेरे लिए तैयार की गई है। आप वहाँ बिल्कुल इस तरह होंगे जैसे हवा गुनाह में गेंद घुमाने से पहले थी। आमीन। जी हाँ, अब छठी मोहर को कुछ करना है। जी हाँ जनाब, यकीनन तमाम दुनिया हजार साल बादशाही के दौर के लिए तड़प रही है और चिल्ला रही है। अब देखें कि मौजूदा दौर गंदगी में बेहद डूबा हुआ है, जैसा कि कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। मुझे यकीन है मैंने इस टैबरनेकल में इस बात पर मुनादी की थी जिसका उन्मान था दुनिया का जवाल पजीर होना, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखे दुनिया किस तरह जवाल पजीरी का शिकार है, तवज्जो दे कैसे इसकी हर एक चीज दरम बरम हो रही है। यकीनन ये ऐसा ही है, इसे इस तरह जवाल पजीर होना है। जी हाँ जनाब, जरा इसके ढांचे की तरफ निगाह करें, मुझे जरा इसकी वजह बयान करने दें जिसकी वजह से दुनिया ऐसे हो रही है। इस दुनिया का ढांचा लोहा पीतल और इस जमीन का माल है, यही इसका ढांचा है जो इसमें से जंग और सनअतकारी के लिए निकाला जा रहा है जब तक कि ये तैयार नहीं हो जाता। खैर, हमारे मुल्क के इस हिस्से के अंदर गुज़िश्ता रोज के जलजले से पहले कभी जलजला नहीं आया था। आप गौर करें कि सिर्फ अगले रोज सेंट लुइस और वहाँ के नशीबी इलाकों में एक जलजला आया। देखें जमीन किस कदर पतली हो रही है क्योंकि लोगों ने इसमें से सब कुछ निकाल लिया है, समझे। इसी तरह सियासत इस कदर गलीज हो चुकी है कि बड़ी मुश्किल से उनके दरमियान कोई दयानतदार शख्स मिलेगा। देखें ये निजाम है और इसका इखलाक इस कदर पस्त है कि अब ये ना होने के बराबर है। बस यही सारी बात है, समझे। यकीनन ऐसा ही है, इसका मजहब नासूर है। जी हाँ जनाब, ये छठी मोहर के बहुत जल्द खोले जाने का वक्त है और जब ये खुलती है तो फिर खात्मा होगा। ओ मेरे खुदाया, दुल्हन जा चुकी होगी, वो जा चुकी होगी, मलका अपने मकाम पर जा चुकी होगी, और जैसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो वो बादशाह के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी होती है और इसराइल के बकिये पर जाने के लिए मोहर कर दी जाती है और फिर फितरत आगे बढ़ती है। हो यही वो वक्त है। छठी मोहर के खुलने की आखिरी आयत पर गौर करें। वो लोग जो कलाम की मुनादी पर और जिंदा खुदा के तस्दीक शुदा कलाम पर हंसे, जब वो नबी जिन्होंने वहाँ खड़े होकर मुजजात किए और उस दौर के दौरान सूरज को और बाकी सब चीजों को बंद कर दिया, समझे, वो पहाड़ों और चट्टानों से चिल्लाते हुए कहेंगे हमें छुपा लो। गौर करें, वो कहेंगे हमें उस कलाम से छुपा लो जिसका हमने मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने उसे आते देख लिया। चिल्लाएंगे हमें उस बर्रा के गजब से छुपा लो, और वो कलाम है। देखें, उन्होंने कलाम का मजाक उड़ाया और यहाँ कलाम मुजस्सम हुआ है, और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसे, उसे ठट्ठों में उड़ाया, और अब वहाँ मुजस्मे कलाम नाजिल हुआ। वो तौबा क्यों ना कर सके? वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे, इसलिए कि वो इसके बारे में यानी सजा के मुतल्लिक जानते हैं। उन्होंने इसका जिक्र सुना, उन्होंने इस तरह इबादत में बैठकर सुना और इसके बारे में जानते हैं, और वो उन बातों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में उन नबियों ने पेशनगोई की थी, और वो उनको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन चीजों को उन्होंने टुकराया था, उन्होंने रहम को आखिरी मर्तबा भी टुकरा दिया, और जब आप रहम को टुकराते हैं तो फिर आपके लिए अदालत के सिवा और कुछ नहीं बचता। जब आप रहम को टुकराते हैं तो जरा इसके मुतालिक सोचें, वो इस मकाम पर पहुंच चुके थे और उनके पास कोई जगह ना थी जहां वो जा सके, कोई पनागाह ना थी, और बाइबल बयान करती है कि वो चिल्ला उठे और उन्होंने चट्टानों और पहाड़ों से कहा कि आओ हम पर गिर पड़ो और हमें उसके चेहरे बल्कि बर्रा के गजब से छुपा लो। उस वक्त उन्होंने तौबा करने की कोशिश की, लेकिन गौर करें कि बर्रा अपने लोगों का दावा करने के लिए पहुंच चुका था, और वो चट्टानों और पहाड़ों से कहेंगे, दुआएं मांगेंगे, लेकिन उनकी दुआओं का वक्त गुजर चुका था। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का रहम और नेकी लोगों की तरफ बढ़ाई जा रही है, जबकि तकरीबन 2000 साल से इस बात के लिए बनी इसराइल को अंधा कर दिया गया है ताकि हमें तौबा करने का मौका दिया जाए। कहीं आपने इस रहम को ठुकरा तो नहीं दिया? क्या आप ऐसा कर चुके हैं? क्या आप इसको रद्द कर चुके हैं? देखें, आप क्या हैं? आप कहां से आए हैं और आप कहां जा रहे हैं? ये सवाल आप डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, ना ही आप ये सवाल दुनिया में किसी और शख्स से पूछ सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़कर आप मालूम कर सकें कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं और आप कहां जा रहे हैं, मास्वाय इस एक किताब के। अब आप जानते हैं कि आपके पास बरे का खून है जो आपकी जगह काम कर रहा है। आप गौर करें, आप किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए अगर खुदा ने आपके लिए यह बंदोबस्त किया है, तो आखिरी काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जो कुछ उसने किया है हम उसको कबूल करें। बस यही कुछ है जो उसने हमको करने के लिए कहा है। और अगर इसी बुनियाद पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे इन आफतों पर बोलना पड़ेगा, लेकिन ये सब कल रात की इबादत में होगा, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने यहाँ इस पर निशान लगा रखा है, यहाँ रुक जाने का निशान लगा है, समझ गए? इसलिए फिर मुझे कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब आए एक लम्हे के लिए अपने सर को झुकाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने उसे कबूल नहीं किया और अभी तक खुदा का वो प्यार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसे कबूल नहीं किया, अगर आपने उसे कबूल नहीं किया तो आप बड़ी तवज्जो के साथ मेरी इस बात को सुने। अगर आपने अभी तक उसका प्यार और रहम कबूल नहीं किया तो आपको उसकी अदालत और उसके गजब का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, आज रात आप उसी जगह खड़े हैं जहाँ आदम और हवा बागे अदन में खड़े थे। आप आजाद मर्जी के मालिक हैं और आपके पास हक है। आप चाहें तो जिंदगी के दरख्त के पास जा सकते हैं या फिर आप अदालत में खड़े होने का मंसूबा बांध सकते हैं। लेकिन आज जबकि आपका जहन ठीक काम कर रहा है और आप में समझ मौजूद है और आप उठकर उसको कबूल करने के लिए सेहतमंद है, और अगर आपने पहले उसे कबूल नहीं किया तो अब उसे कबूल क्यों नहीं करते? क्या यहाँ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाकर ये कहेंगे, भाई ब्रहनम मेरे लिए दुआ की जाए, अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें मुझ पर वाकई हों। अब इस बात को याद रखें दोस्तों, खुदा आपको बरकत दे, ये अच्छी बात है। मेरे देखें, ये मेरे ख्यालात नहीं है, ना ही मेरी अपनी इसके मुतल्लिक ऐसी सोच है, लेकिन बहैसियत मेरी तरफ से नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकरू इस बात को जानता है और वही मेरी मदद करेगा। आप इंतजार करें, खुदावंत की मर्जी से कल रात मैं आपको वो भेद दिखाना चाहता हूँ जो ठीक यहाँ इस इबादत में साथ साथ चलता रहा। मुझे शक है कि जो कुछ यहाँ वकूफ में आया शायद आपने उसे देखा है। गौर करें, क्या वकूफ में आया? ये ऐसी बात थी जो यहाँ आप लोगों के बिल्कुल सामने वकूफ में आई, और मैं हर रात ये देखता रहा हूँ, कोई शख्स खड़ा होकर कहे मैंने उसे देखा है, समझे? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी से इस बात को रद्द ना करें। अगर आप एक मसीही नहीं हैं और अगर आप उस खून के नीचे नहीं हैं और अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं और ना ही रूह कुदस से मामूर हैं, और अगर आपने कभी यीशु मसीह का शख्सी तौर पर उसके नाम में बपतिस्मा लेकर उसकी मौत, उसके दफन होने और उसके जी उठने के बारे में सरे आम ऐलान नहीं किया कि आपने उसे कबूल कर लिया है, तो अभी पानी का हौज तैयार है और वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने वाले चोगे मौजूद हैं और सब कुछ तैयार है। मसीह अपने हाथों को फैलाए खड़ा है कि आपको कबूल कर ले। हो सकता है अब से एक घंटे बाद खुदा का रहम आपको ना मिल सके। हो सकता है इस वक्त को रद्द करने का आपका ये आखिरी मौका हो और फिर वो दोबारा आपके दिल को कभी ना छुए। लेकिन अब जबकि आप उसे कबूल कर सकते हैं तो फिर आप उसे क्यों कबूल नहीं करते? अब वक्त है। मैं जानता हूँ कि आम तरीका ये है कि लोगों को मस्जिद पर सामने आने की दावत दी जाती है। हम भी ऐसा ही करते हैं और ये मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन इस वक्त यहाँ इतने लोग मौजूद हैं कि सामने की जगह मुकम्मल तौर पर भरी हुई है, हत्ता कि मैं आपको आगे नहीं बुला सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, रसूली दिनों में वो कहा करते थे, जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, समझे? बस आप वक्त हकीकत में उसे अपने दिल में बसा लें। ये सब कुछ यहाँ मौजूद है, ये जज्बात नहीं है, अगरचे ये बात जज्बात के साथ मिली हुई है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि मैंने कहा, सिगरेट नोशी और शराब नोशी गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह की खसूसियात है। ये आदत जाहिर करती है कि आप यकीन नहीं रखते हैं, समझे? लेकिन जब आप अपने दिल में हकीकी तौर पर यकीन करते हैं और इसी बुनियाद पर आप मालूम करते हैं कि आप कहां पर बैठे हैं, और जब आप अपने पूरे दिल के साथ उसे कबूल करते हैं, तो फिर ठीक वहां कुछ वकूफ में आता है और फिर कुछ होकर रहता है। फिर आप इस बात की गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि कुछ वाकया हुआ है। फिर आप पानी के पास जाएं और कहें, मैं जमायत को दिखाना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं और अपनी गवाही इस बात पर कायम करना चाहता हूं कि मैं दुल्हन के साथ अपनी जगह हासिल करूंगा और मैं अभी ही यहाँ बपतिस्मा लेने को खड़ा होता हूँ। मैं जानता हूँ आज रात दुनिया में बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन खवातीन हैं, लेकिन मैं फक्त एक को जलाल में देखने का पाबंद हूँ और वो उन सब में से सिर्फ मेरी अपनी बीवी है। वो मेरे साथ घर जाती है। वो शुरू में मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन वो किस तरह मेरी बीवी बनी, उसने मेरा नाम अपनाया। वो आ रहा है। दुनिया में बहुत सारी खवातीन यानी कलीसियाएं मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए आ रहा है, क्योंकि वो उसके नाम से कहलाती है। जो मसीह में है, खुदा उनको उसके साथ ले आएगा। हम उसमें किस तरह दाखिल होते हैं? एक ही रूह से हमने एक बदन होने का बपतिस्मा लिया। अब जो ही हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, चाहे दिल में या चाहे बुलंद आवाज से। यहाँ कमरों के अंदर और बाहर बेहतरीन लोगों का ग्रुप मौजूद है, और यहाँ इर्द गिर्द और गलियों में भी चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। लेकिन इस दौरान आपको हम यहाँ आपको इस मजबे पर नहीं बुला सकते, लेकिन आपका दिल ही इस वक्त मजबा है। इसलिए ठीक अपने दिल में कहें, खुदावंद यीशु, मैं इस पर यकीन करता हूँ। मैं आज रात के पहर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और इस छोटे से कमरे में मेरा दम घुट रहा है, और मैं यहाँ इन लोगों के दरमियान बैठा हुआ हूँ, और मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता, और मैं इसे खो नहीं सकता। मैं इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और हर चीज ने, जैसा कि कल रात मैंने आपको बताया कि किस तरह उसने मेरी मदद की, और खुदावंद जानता है कि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, जैसे पालूस ने भी कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये रोया थी या जो कुछ भी था, मैं वहाँ खड़ा था और मैंने उन लोगों को देखा और उनको छुआ जो लोग यहाँ से जा चुके थे। और ये इस कदर हकीकी बात है जिस कदर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे कमजोर बहन भाइयों, इस बात को नजरअंदाज ना करें, ऐसा हरगिज ना करें। मैं जानता हूँ आपने मुनादी सुनी है, आपने ये वो और बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लेकिन तो भी जरा सुने ये बात, मुझसे सुने। देखे, मैं जानता हूँ ये सच्चाई है, आप सिर्फ सुने। मैं इसको मजीद साफ नहीं कर सकता, समझे? इसे नजरअंदाज ना करें, ये सब कुछ आप पर है। आए अब दुआ करें। खुदावंद यीशु, यहाँ मेरे सामने रुमालों का एक संदूक रखा हुआ है जो बीमार लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। मैं अपने हाथों को इन पर रखता हूँ और इन पर दुआ करता हूँ, जैसे बाइबल ने बयान किया है। लोग पालूस के बदन के साथ रुमाल और पटके छुआ कर ले जाते थे, और नपाक रूहें निकल जाती थी, और बड़े बड़े मौजजात होते थे, क्योंकि उन्होंने पालूस को देखा था, और वो जानते थे कि खुदा का रूह उस पर है। वो जानते थे वो अजीब शख्स है, और जिन बातों के मुतालिक वो बताता है वो कलाम की बातें हैं। वो अब्रानी कलीसिया के पुराने अब्रानी लफ्ज को लेकर जिंदा करता और उसको मसीह के साथ पैवस्ता करता। वो जानते थे कि खुदा उस शख्स के अंदर मौजूद है, और फिर उन्होंने खुदा को उसके जरिए बड़े बड़े और अजीब काम और पेशनगोइयां करते देखा था, और जो कुछ वो कहता था उसी तरह होता था, और वो इस बात को जानते थे कि वो खुदा का खादम है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू इन लोगों की इस कदर, जिन्होंने तेरे कलाम की तहसीम की है, इनके लिए ऐसा कर, और यीशु की खातर इन लोगों को तंदुरुस्ती दे दे। और खुदावंद, यहाँ हाजरीन में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिस तरह पेंतिकोस के दिन पतरस रसूल के सामने लोग बैठे कलाम सुन रहे थे, किस तरह वो कलाम के पुराने ऐदनामे में चला गया और कलाम को खींच कर लाया, और उसने कहा यूएल नबी ने फरमाया है कि आखिरी दिनों में ये बातें वाकया होंगी, और ये वही बातें हैं। और उसी घड़ी 3,000 लोगों ने ईमान लाकर बपतिस्मा लिया। और अब बाप, आज हम यहाँ तेरे फजल की बदौलत खड़े हैं, और ये इसलिए नहीं है कि हम कोई खास लोग हैं, बल्कि ये इसलिए है कि ये शेर बब्बर या बछड़े या इंसान के जमाने की तरह ये उकाब का जमाना है, और ये इस घड़ी का मसा है, और ये वो वक्त है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इस वक्त के लिए रूह कुदूस का खास काम है कि साबित करे कि यीशु मुर्दा नहीं है, बल्कि शाम की रोशनी खत्म होने से पहले वो इन कामों को करेगा जिनका उसने जिक्र किया है। यहाँ हम सारे रास्ते में उसे ये काम करते देखते रहे हैं। हमने उसको साइंसी तहकीक के अंदर दाखिल होते हुए भी देखा है, और उसकी तस्वीर भी ली गई है, यानी उस अजीम आग के सतून की जिसने उस राह में बनी इसराइल की रहनुमाई की, जो रास्ते में पालूस को भी मिला। और हम जानते हैं कि उसी आग के सतून ने जिसने बियाबान में मूसा की रहनुमाई की, उसी आग के सतून के वसीले उसने बाइबल की कई किताबों को तहरीर किया, क्योंकि वो कलाम से मसा था। और बिल्कुल वही आग का सुकून पालूस पर दमिश्क की राह में जाहिर हुआ और उसने बाइबल की कई किताबों को तहरीर किया जो खुदा का कलाम है। और अब ऐ खुदावन, वही आग का सुतून जो कलाम की तस्दीक के मुताबिक और साइंसी तहकीक के मुताबिक साबित शुदा है, उसी को हम यहाँ खुदावन का कलाम जाहिर करते हुए देख रहे हैं। ऐ खुदावन खुदा, जल्दी से उन लोगों को जल्दी से उठा खड़ा कर जिनके नाम किताबे हयात में मौजूद हैं, ताकि जब ये रोशनी उनके रास्ते में नमूदार हो तो वो देख सके उस बुरी शोहरत रखने वाली औरत की तरह जो उस रोज कुएं पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से पहचान लिया और वो जान गई कि वो कलाम था। और अब ए बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस वक्त जो लोग तुझे अपने दिलों में कबूल कर रहे हैं वो इसी घड़ी से ता अब तक ये फैसला कर ले कि उन्होंने गुनाह से नाता तोड़ दिया है, और वो उठें और अपने आप को तैयार करें और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर सरेआम ऐलान करें और दिखाएं कि उनका ईमान है कि खुदा ने उनको माफ कर दिया है और उन्होंने यीशु मसीह के नाम को अपना लिया है। ए बाप, अब इन लोगों पर रूह कुदूस के तेल को डाल ताकि इनको खुदावंद खुदा की खिदमत पर मामूर किया जा सके, ताकि ये इस आखिरी बुरे जमाने में तेरे लिए काम करने वाले बन जाएं। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त बचा है और कलीसिया किसी भी वक्त उठाई जा सकती है, क्योंकि बर्रा किसी भी वक्त मकदस को या कुर्बानी के तख्त को यानी खुदा के तख्त से जहाँ कुर्बानी रखी हुई है छोड़ सकता है, और इसके बाद ये वक्त गुजर जाएगा और दुनिया के लिए मजीद कोई उम्मीद ना होगी बल्कि वो खत्म हो चुकी होगी। फिर वो जलजलों के अजीम तोड़ फोड़ से इस तरह गुजरेगी और इस तरह बड़े शोरों गुल से हिल जाएगी जिस तरह जी उठते वक्त हुआ था, और फिर जिस तरह मसीह कब्र में से जी उठा जब मुकद्दस लोग जी उठे, बिल्कुल वही चीज वकू में आएगी। ऐ खुदावन, ये वाक्या किसी भी वक्त रुनुमा हो सकता है। हम उस पुर मसरत दिन की आमद का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐ बाप, अपने बच्चों को अपने हाथों के नीचे ले ले, अपने छोटे बड़ों को अपनी गोद में जमा कर ले, इस इल्तिजा को कबूल कर, और जब तक ये लोग खिदमत के लिए जोरावर ना हो जाएं, अपने कलाम से इनकी परवरिश कर। ऐ खुदावंत, अब हम इन्हें तेरे स्पुर्द करते हैं, हमारी इस दरखास्त का जवाब दे, क्योंकि ऐ बाप, तूने मरकस 11वें बाप में कहा है, जब तुम दुआ करो तो जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है तो वो तुमको मिल जाएगा। इसलिए जो खुदा गुज़िश्ता सालों से इन बातों को और इस आखिरी हफ्ते में इन मोहरों को जाहिर करता आ रहा है, ऐ खुदावन खुदा, मैं अपने पूरे दिल के साथ तुझ पर ईमान रखता हूँ कि ये वक्त जितना हम तेरी आमद के बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब आ पहुँचा है। मेहरबानी से मेरी दुआ का जवाब आने दे, और खुदा का हर एक बुलाया हुआ बच्चा जो यहाँ से दूर बैठकर बराह रास्त या बजरिया टेप किसी भी वक्त इसे सुनेगा, मैं उन्हें खुदा की बादशाही के लिए हासिल कर सकूं, इस बात को जानने की बुनियाद पर कि ये कलाम है जो बयान किया जा रहा है। ऐ बाप, शाम की रोशनी चमकने दे, मैं यीशु के नाम में इन्हें तेरे स्पुर्द करता हूँ, आमीन। और अब वो तमाम लोग जो अंदर या बाहर हैं, जिन्होंने इस बात का यकीन कर लिया है और उन्होंने कभी सरेआम इकरार नहीं किया और उन्होंने अपना नाता गुनाह से अभी तक नहीं तोड़ा और वो खुदा का रहम चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह में उसे कबूल कर चुके हैं, इसलिए होश तैयार है। इसलिए जो कोई बपतिस्मा लेना चाहता है वो उसे बपतिस्मा देने के लिए तैयार है, आज या कल या फिर अभी या जब कभी मुमकिन हो। क्या आपने छठी मोहर से बरकत पाई है? आपने गौर किया है ये कहाँ खुली है? क्या आपने इसका यकीन कर लिया है? लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंत का बाजू किस पर जाहिर हुआ। समझे, पैगाम पर ईमान लाए फिर खुदावंत का बाजू जाहिर होता है, बाजू यानी खुदा का कलाम जाहिर होता है। अब खुदावंत ने चाहा तो कल सुबह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब दूं, शायद बाकी रातें या उनमें से ज्यादातर वो रातें मैं दुआ में गुजारूंगा। मैं रात को तकरीबन 1 से 3 घंटे ले रहा हूँ। कल रात मैं 1 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं जा सका बल्कि मैं रात 3 बजे तक मुतालिया करता रहा। समझे, देखे, क्योंकि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। ये सच है, हम किसी भी चीज और किसी भी बेवकूफी या किसी भी वहम के करीब होते हैं या फिर आधा ईमान रखते हैं। पहले मुझे इसे देखना होता है और फिर जब मैं इसे देख लेता हूँ तो फिर इसे कलाम के अंदर भी जरूर होना चाहिए। خدا کے فضل سے یہ اب تک مکمل طور پر درست ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے اس کو تمام راستے میں ساتھ رکھا ہے، اور یہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ اسے خداوند یوں فرماتا ہے ہونا ہے، کیونکہ یہ صرف میری اپنی سوچ اور علم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا کلام ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور یہاں جو کلام ہے وہ اس نے مجھے دیا ہے اور اسے باہم جوڑ رہا ہے اور آپ پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ دیکھیں، یہاں کلام اس طرح فرماتا ہے، پھر جو مکاشفہ وہ مجھے دیتا ہے وہ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ شاید ہم میں سے کسی نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہو، میری سوچ سے بھی مختلف ہوتا ہے، کیونکہ حالانکہ میں بھی کبھی اتنی گہرائی میں نہیں گیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترتیب سے باہم جڑ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، سمجھے؟ یہ ٹھیک اسی طرح ہے۔ اس میں جو کچھ اس وقت کے لیے ہے وہ کھولا گیا ہے، اور پھر خداوند آتا ہے اور اسے اس طرح ٹھیک انداز سے دھکیلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہی ہے، یعنی یہ خداوند ہے۔ اوہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اسے اپنے پورے دل سے پیار کرتا ہوں۔ اب آپ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو مذبح پر نہیں بلا سکتے، کیونکہ کئی لوگوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے، اس لیے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ دیکھیں، بس وقت بہت ہی قریب ہے، اور آپ کو جس قدر طاقت لگانی چاہیے لگائیں، اس طرح کہ پھر دوبارہ کھینچے نہ جا سکیں۔ دیکھیں، صرف زور لگا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں اور کہیں، خداوند مجھے باہر نہ رہنے دے، خداوند مجھے باہر نہ چھوڑنا، کیونکہ دروازہ بند ہو رہا ہے، کاش میں صرف اندر داخل ہو سکوں، سمجھے؟ کیونکہ ایک دن خداوند دروازہ بند کر دے گا، جس طرح اس نے نوح کے زمانے میں کیا تھا، اور پھر لوگ دروازے پر دستک دینے لگے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اب یاد رکھیں کہ بائبل ساتویں گھنٹے کے متعلق بیان کرتی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کچھ لوگ پہلے گھنٹے میں، کچھ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں گھنٹے میں سوئے، لیکن ساتویں گھنٹے میں ایک زوردار شور مچا کہ دیکھو دلہا آ گیا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ ان سوئی ہوئی کنواریوں نے کہا، سنو، اب ہم اس تیل میں سے کچھ لینا چاہتی ہیں، لیکن دلہن نے کہا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، شاید کافی نہیں ہے، اس لیے اگر تم چاہتی ہو تو جاؤ اس کے لیے التجا کرو۔ کیا آپ ان سوئی ہوئی کنواریوں کو نہیں دیکھ رہے؟ ان اپسپولین، پریسبٹیرین اور لوتھرن اور باقی سب کو دیکھیں جو ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ روح القدس کو حاصل کرنے کی بجائے غیر زبانیں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے بتیرے ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں، لیکن وہ اس چرچ میں آنے سے کتراتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے گھر جا کر ان کے لیے دعا کروں۔ پھر آپ کیسے اس کو روح القدس کہتے ہیں؟ یہ پاکرو نہیں ہے، بلکہ یہ غیر زبانوں میں بولنا ہے، سمجھے؟ اب دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ روح القدس غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ان کی نقل بھی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں جناب، اس لیے روح کا پھل ثابت کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کسی بھی درخت کا پھل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا درخت ہے، نہ کہ درخت کی چھال، بلکہ اس کا پھل۔ اب پھر غور کریں کہ جب وہ آخری گھنٹے میں آئیں اور وہ وہاں اس جگہ گئیں، تو انہوں نے جا کر کہا، سب ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہے کہ اب ہم نے اسے پا لیا ہے، ہمیں یقین ہے ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں، جیسے ہم اسے حاصل کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ میں یہ بات نہ کہوں، دیکھیں، کیونکہ شاید کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ اگلے دن جب میں نے اوپر اٹھائے جانے کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے واقعہ ہوگا، میں نے بتایا، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے حاصل کر لیں گے تو ٹھیک ہے، توجہ کریں، چوکس رہیں، اس لیے کہ یہ آپ پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ غور کریں، جب سونے والی کنواریوں نے سوچا کہ وہ دعا کر کے واپس اندر جا سکتی ہیں، تو تب دلہن جا چکی تھی، یہ واقعہ ہو چکا تھا اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ بالکل اس طرح جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، تو پھر کون سا واقعہ پیش آیا؟ پھر کیا وقوع پذیر ہوا؟ وہ مصیبت کے دور میں پھینک دی گئی۔ بائبل بیان کرتی ہے وہاں رونا اور ماتم اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ کب واقعہ ہوگا؟ بھائی اور بہنوں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نہیں جانتا، پر دیکھیں، شاید اب یہ اسی وقت ہو جائے۔ پھر بھی یہ وہ بات ہے جو میرا ذاتی خیال ہے، سمجھے؟ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بہت قریب ہے۔ میں تو ہر دن میں بس یہی چاہتا ہوں، لیکن جس قدر ہو سکتا ہے نرمی سے چل رہا ہوں، سمجھے؟ اور پھر جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کچھ واقع ہوا ہے، اور میں نے کسی چیز کو پر آتے دیکھا ہے، مجھ میں تو سانس لینے کی بھی سکت نہیں تھی، سمجھے؟ اور وہاں वो उस जगह खड़ा था, वो रोशनी वहाँ पर मौजूद थी, वो ऐसे ही था। मैं जानता हूँ ये सच्चाई है, मैंने सोचा था, मगर है खुदा मैं ऐसा नहीं कह सका, और मैं अब भी ऐसा नहीं कह सकता, मैं सिर्फ कमरे से बाहर निकल गया और इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। भाइयों, मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, मैं क्या कर सकता हूँ, हो समझे, मुझे मछली के शिकार या फिर किसी और काम के लिए जाना चाहिए, या मुझे, भाई आपको मैं आपको बता नहीं सकता, समझे। हमारे पास अच्छा वक्त है, क्या नहीं है, खुदावंद की हमद, आमीन, समझे। हम एक बहुत ही अजीम वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं। देखे, मेरा दिल खुशी और मसरत से छलक रहा है, लेकिन जब मैं इस दुनिया और उन हजार हा लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनके मुतल्लिक मैं जानता हूँ कि वो खो चुके हैं और उस नागवार तारीकी के साए में हैं, तो फिर यकीनन आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फक्त ये महसूस कर सकते हैं कि रूह कुदस आपके दिल में चिल्ला रहा है, जिस तरह के ये हमारे खुदावन के दिल में उस वक्त चिल्लाया जब उसने यरूशलम और अपने लोगों पर निगाह की। गौर करें और कहा, ए यरूशलम, कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा। आप रूह कुदस को ये कहते हुए सुने, कितनी ही बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हें जमा कर लूं, गौर करें, लेकिन तूने ना चाहा, समझे। दोस्तों, जैसा कि हम भी ठीक ऐसे ही वक्त के दौरान मौजूद है, ये जो कुछ भी है खुदावन जानता है, और कोई भी शख्स नहीं जानता कि ये कब होगा, ये राज है, इसलिए कोई भी नहीं जानता ये कब होगा। लेकिन यीशु ने हमें बताया है कि जब तुम इन तमाम बातों को होते हुए देखो, जैसे मैंने आपको बताया, और छठी मोहर का मुआवजना उन बातों से किया जो यीशु ने मत्ती 24 में कही। अब याद रखें कि यीशु ने क्या कहा, जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वक्त नजदीक है, बल्कि दरवाजे पर है। ठीक इससे अगली आयत गालबन 30 या 31वीं आयत में इसी तरह आगे बढ़ते हुए 32वीं और 33वीं आयत तक देखें। उसने कहा, वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? उसने कहा, अब इसको याद रखना। अब याद रखें, वो ठीक वहाँ पर रुक गया, वो छठी मोहर के बाद आगे नहीं बढ़ा, उसने सातवीं मोहर के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी के मुतल्लिक बताया, लेकिन वहाँ वो रुक गया और उसके बारे में उसने कुछ तहरीर नहीं करवाया। जरा अगली बात पर गौर करें जो उसने कही, कि अब एक तमसील से सीखो, समझे। और फिर उसने तमसील बयान करना शुरू की और उसने कहा, ये बातें रूनमा होंगी, और उनके तीन सवालों का जवाब दे रहा था, ये निशान, यानी ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का निशान क्या होगा, और इस दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, और वो छठी मोहर ही है जहाँ दुनिया का आखिर होना है, और सातवें फरिश्ते के नरसिंगा फूंकने के वक्त जिसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, और जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा उसकी कसम खाकर कहा, अब और देर ना होगी, इसलिए जमीन एक नई चीज को जन्म देने वाली है, और ये इख्तिताम है। हम उस मकाम पर हैं और ठीक उसी दरवाजे पर मौजूद हैं, और ऐसा सुनकर मैं कांप उठता हूँ, इसलिए ऐ खुदावंद, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ, समझे। और फिर मैं इस मकाम और इन बेशकीमत लोगों की तरफ देखता हूँ, और फिर यहाँ खड़ा होकर मैं अपने आप पर निगाह डालता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ, ऐ खुदा, क्यों ये लोग उस लम्हे को खो सकते हैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सामीन के दरमियान जाना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप, क्योंकि उसने कहा, कोई इंसान मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। लेकिन हमारे पास यहाँ एक तसल्ली मौजूद है, उसने कहा, वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन देखें, बाकी लोग जो उन तंजीमों के साथ ताल्लुक रखते हैं और उसी पर तकिया करते हैं, लिखा है, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम से जबा हुआ है, उन सब को उसने गुमराह कर दिया, ओ मेरे खुदाया। बस आप गौर करें कि ये कितने दुख की बात है, इसलिए एक ही काम है जो आप कर सकते हैं, और वो काम ये है कि आप सिर्फ कलाम के साथ खड़े रहें और सिर्फ उस पर निगाह रखें, और जो वो करने को कहता है फक्त वही करें, समझे। जो कुछ कलाम करने को कहता है सिर्फ वही करें, और जब आप बाहर देखते हैं और कहते हैं, ओ मेरे खुदाया, उन्होंने तो ऐसा वैसा किया है, ओ वो तो सिर्फ ऐसा है, आप उसे महसूस नहीं करते, हालांकि वो बिगाड़पन है। अब देखें, मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है टेप बंद हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ब्रहनम की इन टेपों के जरिए खिदमत है, और मैंने भी गौर किया है, क्योंकि लोग इन टेपों को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको आपस में जोड़ें, और आप इस बात से वाकिफ हैं। और फिर वो लोग कहते हैं, भाई ब्रैनम, काश हमारी भी ऐसी खिदमत होती। आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, आपको दयानतदार रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं जानते कि इसके साथ क्या क्या झेलना पड़ता है। वो मेरे खुदाया, और ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आप जो कुछ कहते हैं, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए याद रखिए, जब आप लोगों को गलत बताते हैं तो खुदावन उनके खून का हिसाब आपसे लेगा। बस आप जरा इसके मुतालिक सोचें, ये एक बड़ी खौफनाक बात है। बस मोहब्बत करें, अपने पूरे दिल से यीशु से प्यार करें, बस खालिस बने और किसी की शक्लो सूरत बिगाड़ने की कोशिश मत करें। खुदा के सामने खालिस बने, क्योंकि जितना ज्यादा आप शक्लो सूरत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आप मसीह से दूर होते जाते हैं। समझे? सिर्फ खालिस तरीके से उस पर ईमान रखें। फिर पूछा गया, अच्छा अब तू वापिस कब आएगा? अगर वो आज ही आ जाता है तो ये ठीक है, अगर वो अब से 20 साल के बाद आता है तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं उसकी पैरवी करते हुए अब जिस राह पर जा रहा हूँ, मैं उसी राह पर जाऊँगा। खुदावंद, अगर तू मुझे किसी भी जगह इस्तेमाल करना चाहता है तो खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। और अगर वो अब से सैकड़ों साल बाद आता है तो मेरे पर पोते का पोता भी जिंदा हुआ तो उसकी आमद को देखेगा तो भी। ऐ खुदावंद, मैं नहीं जानता कि ये कब वाकया होगी, लेकिन आज मुझे अपने साथ दुरुस्त चलने की तौफीक दे। समझे? मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं कहीं भी एक छोटी सी झपकी लेता हूँ, उस दिन इसी तरह उड़ जाऊँ। जब नीचे आएगा तो आलीशान जगह होगी, यानी खुदा की बादशाही होगी, जहाँ तमाम बूढ़े जवान होंगे और जहाँ वो पहले ही से सफेद चोगे पहने होंगे। मर्द और खवातीन तब्दील हो जाएंगे और वो खूबसूरत होंगे, जिस तरह एक खूबसूरत मर्द और जिस तरह एक खूबसूरत औरत की कारागरी हो। और वहाँ जवान मर्द और जवान औरतें तमाम तर खूबसूरती के साथ और कदो कामत के साथ खड़े होंगे, और वो बूढ़े ना होंगे। वहाँ गुनाह ना होगा और ना ही वहाँ नफरत और हसद जैसी कोई चीज होगी। कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं होगी। ओ मेरे खुदाया, मेरा ख्याल है अब टेप बंद हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट और लेना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या ये मुनासिब है? अब देखें, ये जरा जाती सी बात है, क्योंकि कल मैं लेकिन ये बड़ी शानदार बात होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है अब ये कहना बेहतर है। सुने, मैं क्या कहने लगा हूँ, ये मेरे बल्कि अब ये बात हमारे लिए है। मैं तो बस, आप जानते हैं, मेरी बीवी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और वो मीडा है, और जब तक मैंने इससे शादी नहीं की थी तब तक मेरी मोहब्बत मेरी पहली बीवी के लिए थी, और उस वक्त मैं उसकी फिक्र करता था। मैंने इससे उस वक्त तक शादी नहीं की जब तक खुदा ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। और आप हमारी इस कहानी के बारे में जानते हैं, कैसे ये औरत दुआ करने के लिए गई और कैसे मैंने ये सब कुछ किया, और उसने बराह रास्त मुझे बताया जो करना था। उसने कहा, जा और इससे शादी कर ले, और उसने शादी करने का वक्त भी बताया। ये बड़ी प्यारी औरत है, और आज रात ये मेरे लिए दुआ कर रही है, और जैसा कि अब 8 बजे हैं, तो इस वक्त मेरी बीवी घर में है, और गालबन वो अब भी दुआ कर रही होगी। अब तवज्जो दे। एक दिन उसने मुझसे कहा, उसने कहा मैं फरदोस के मुतालिक तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मीडा, वो क्या सवाल है? उसने कहा, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने कहा, हाँ, शादी होने के बाद ठीक ऐसा ही है। और उसने कहा, तुम जानते हो कि होप भी तुमसे मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, हाँ। और उसने कहा, अब देखो, उसने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं उससे हसद करती हूँ। उसने कहा, लेकिन वो थी। और उसने कहा, अब देखो, जब हम फरदोस में जाएंगे और जैसा कि तुमने बताया है, तुमने उसे वहाँ देखा। और मैंने कहा, हाँ, वो वहाँ मौजूद है, मैंने उसे देखा है, बल्कि मैंने 2 मरतबा उसे वहाँ देखा है। वो वहाँ है, वो मेरा इंतजार कर रही है, और इसी तरह शारून भी मौजूद है, बल्कि जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ इसी तरह मैंने उसे भी देखा, मैंने उसे वहाँ देखा। और मैंने कहा, उसने कहा, ठीक है, अब देखो, जब हम वहाँ जाएंगे, और कहा, बताओ फिर दोनों में से तुम्हारी बीवी कौन होगी? मैंने कहा, तुम दोनों, लेकिन सुनो, उस वक्त तुम दोनों वहाँ होंगे, लेकिन इस जैसी कोई भी चीज वहाँ ना होगी। उसने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं सकी। मैंने कहा, अब देखो मेरी जान, जरा बैठ जाओ और मैं तुमसे कुछ बातें बयान करने लगा। मैंने कहा, अब मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम जानती हो कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी इज्जत और कदर करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर क्या हो अगर मैं बेहतरीन कपड़े पहनकर शहर में चला जाऊँ और एक नहायत खूबसूरत कस्बी किस्म की औरत आए और आकर अपनी बाहें मेरे गिर्द डाल दे और कहे, ओ भाई ब्रहनम, मैं यकीनन तुमसे प्यार करती हूँ, और अपनी बाहों को मेरे गिर्द डाले और मुझे गले लगाना शुरू कर दे, तो तुम इसके बारे में क्या सोचोगी? उसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। और मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम? अच्छा, ये बताओ, वो कौन है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है? क्या इस बात को जाहिर करोगी? अच्छा बताओ, मैं या फिर खुदावंद यीशु? अब देखो, ये फैमिली के तौर पर बातचीत हो रही थी। उसने कहा, खुदावंद यीशु, और कहा, हाँ बिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने अपना आप तुम्हें दे दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने अपना आप उसे दिया। मैंने कहा, शुक्रिया प्यारी, मैं इस बात को सुनकर जो तुमने कही है बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, अब देखो क्या हो अगर इसी तरह की कोई औरत यीशु के पास आए और अपनी बाहों को उसके गिर डाल दे और कहे, यीशु मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम इसके मुतालिक क्या ख्याल करोगी? उसने कहा, मैं तो खुश होंगी। गौर करें तो फिर ये फिलियो मोहब्बत अगापे मोहब्बत में तब्दील हो गई। देखें, जो कि मोहब्बत की आला किस्म है, समझे? इसलिए वहाँ शोर और बीवी जैसी कोई चीज ना होगी, और ऐसा वहाँ बच्चे भी नहीं होंगे, यहाँ तक कि जनाना और मर्दाना जिनसी ख्वाहिश खत्म हो चुकी होगी, और तमाम गदूद, बल्कि वहाँ तमाम लोग फरिश्तों की तरह एक जैसे होंगे, समझे? और वहाँ कोई ऐसी जिनसी ख्वाहिश ना होगी, और देखें, वहाँ किसी भी तरह जिनसी साख्त के गदूद ना होंगे, समझे? आप वहाँ ऐसे नहीं होंगे। जी हाँ जनाब, बस जरा अपने मुतालिक सोचे, आप जिनसी साख्त के गदूद के बगैर होंगे। ये हमें इस वजह से दिए गए हैं ताकि हम इस जमीन पर नस्ल को बढ़ाएं, आप समझ गए? लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होगी, और ना ही वहाँ कोई जनाना या मर्दाना साख्त होगी, हरगिज नहीं। लेकिन वहाँ खुदा के कदो कामत का फन्ने शाहकार होगा, ये बिल्कुल सच है, और वहाँ हम हकीकी तौर पर खालिश होंगे, और किसी भी हाल में वहाँ फीलियो मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होगी, वहाँ अगापे मोहब्बत होगी, समझे? बस वहाँ बीवी जैसी कोई भी चीज आपके लिए हसीनो जमील नहीं होगी, और वो और आप एक दूसरे से ऐसा तल्लुक भी कायम नहीं कर सकेंगे, वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, नहीं, हरगिज नहीं, हत्ता के वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। गौर करें, ये फीलियो मोहब्बत जैसा हिस्सा वहाँ हरगिज नहीं होगा। देखें, वहाँ हसद जैसी कोई चीज नहीं होगी, बस इस बात के मुतल्लिक वहाँ हसद ना होगी, इसलिए वहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है। बस आप ऐसी किसी चीज के मुतल्लिक वहाँ जान ही नहीं पाएंगे, समझे? हालांकि वहाँ खूबसूरत जवान मर्द और जवान औरतें होंगी। और फिर इस बात के बाद उसने कहा, बिल, अब मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो वाकया हुई। ये ख्वाब था और मैं सोया हुआ था, और इससे पहले मैंने ये बात लोगों को नहीं बताई, और जहाँ तक मुझे इल्म है, इससे पहले मैंने ये बात कभी भी लोगों में नहीं बताई, बल्कि सिर्फ चंद लोगों को बताई है। और इसके तकरीबन एक महीने के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि एक दिन मैं खड़ा हुआ था और मैं उस अजीम वक्त के बारे में सोच रहा था। अब ये अदालत का वक्त नहीं था। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि कलीसिया की अदालत होगी। कलीसिया से मुराद दुल्हन है, यानी उसकी अदालत नहीं होगी। देखे कि जब मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ ताज देने शुरू कर दिए गए, और बहुत बड़ा तख्त वहाँ लगा हुआ था, और यीशु और इमालनामा लिखने वाला फरिश्ता और बाकी सब भी वहाँ पर खड़े हुए थे, और वहाँ एक सीढ़ी लगी हुई थी जो सफेद हाथी दांत की तरह थी, और इस तरह वो नीचे की जानिब आ रही थी, और एक गुलाई की तरह जो नीचे की जानिब मुड़ रही हो और गिर्दोनमा के मनाजिर पेश करते हुए वो बाहर निकल रही थी, और वो अजीम लश्कर वहाँ बाहर खड़ा हुआ था ताकि देख सके कि अब क्या होने जा रहा है। और मैं वहाँ पीछे एक तरफ खड़ा हुआ था, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे उस सीढ़ी पर चढ़ना है। मैं तो बस वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने देखा इमालनामा लिखने वाले फरिश्ते ने फलां फलां नाम पुकारा, और मैं उसको जान गया और उस नाम को पहचान गया, और मैंने निगाह की तो पिछली तरफ से एक भाई एक बहन के साथ चलता हुआ आ रहा था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप चलकर ऊपर आते हैं। और इमालनामा लिखने वाला फरिश्ता मसीह की जानिब खड़ा हुआ था। अब देखे, ये सिर्फ एक ख्वाब है, और देख रहा था क्योंकि उनके नाम उसके पास थे, और उसने उन्हें किताब हयात से तलाश किया, और उसने उन पर निगाह की और कहा, बहुत खूब मेरे अच्छे और दयानतदार खादम, अब अंदर दाखिल हो। और मैंने पीछे निगाह की जिस तरह वो जा रहे थे, तो वहाँ एक नया जहान था और वहाँ खुशियाँ थी, और उसने कहा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो जाओ जो कि तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर की गई थी, समझे? और हो, मैंने सोचा वो वहाँ जाएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे और खूब मजे करेंगे और उन पहाड़ों पर और उस बहुत बड़ी जगह पर घूमे फिरेंगे। लेकिन मैंने सोचा, ओ क्या ही शानदार बात नहीं है, कैसी शान है, हालेलुया। और मैंने ऊपर नीचे उछलना कूदना शुरू कर दिया, और फिर मैंने एक और नाम को पुकारते हुए सुना। मैंने सोचा, ओ मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। और मैंने वहाँ देखा जहाँ वो जा रहे थे, इसी तरह मैंने उसे देखा, और कहा गया, ऐ अच्छे और दयानतदार, अपने खुदावंद की खुशी में शरीक हो। ओ ओ, मैंने कहा, खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। फिर पुकारा गया मिसाल के तौर पर, उसने कहा आर्मन नेवल, समझे। और मैंने कहा ये तो बूढ़ा भाई नेवल है, ये भाई वहाँ मौजूद था, समझे। ये भाई उस भीड़ से निकल कर आया है और ऊपर चला गया है, और जैसे ही उसने कहा अपने खुदावंद की खुशी में शरीक हो, जो बनाए आलम से पेशतर तेरे लिए तैयार की गई, अंदर दाखिल हो जा। और बूढ़ा भाई नेवल उसी घड़ी तब्दील हो गया और जैसा पहले था उसी तरह चीखना चिलाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। भाइयों, मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके कहता हूँ, खुदा को जलाल मिले, और मेरे लिए वहाँ खड़े होकर ये बड़ा शानदार वक्त था कि मैं अपने भाइयों को अंदर जाते हुए देखूं। और इमालनामा लिखने वाला फरिश्ता वहाँ खड़ा था और उसने कहा विलियम ब्रहनम, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, और मैं खौफजदा हो गया था, और मैंने सोचा हो मेरे खुदाया क्या मुझे भी उनकी तरह करना पड़ेगा। चुनाचे मैं भी चलते हुए वहाँ गया और हर कोई मुझे तपकी दे रहा था, भाई ब्रहनम कैसे हो, भाई ब्रहनम खुदा आपको बरकत दे। और मैं जैसे वहाँ से गुजर रहा था तो लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो मुझे थपकी दे रही थी, और उनमें से हर एक आगे बढ़ रहा था और इस तरह मुझे थपकी दे रहा था, भाई ब्रहनम खुदा आपको बरकत दे, भाई खुदा आपको बरकत दे। मैं जा रहा था, मैंने कहा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप जानते हैं जिस तरह मैं किसी भी मीटिंग या किसी भी इबादत से बाहर आते हुए कहता हूँ। और मुझे भी उस बड़ी हाथी दांत की सीढ़ी से होकर जाना था, और मैंने उस पर चलना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया तो मैं रुक गया, और मुझे ख्याल आया तो मैंने मसीह का चेहरा देखा। मैंने सोचा मैं इस राह से गुजरते हुए उसे अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, और मैं वहाँ रुक गया, और मेरे हाथ इस तरह थे, और मैंने महसूस किया जैसे कोई चीज मेरे बाजुओं के गिर्द सिरकी है, और ये किसी और के बाजू थे। और मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ होप मौजूद थी, जो अपनी बड़ी बड़ी आँखों और स्याह बालों के साथ, जो उसकी कमर पर आ रहे थे, सफेद चोगा पहने हुए थी और इस तरह मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा होप, मैंने महसूस किया मेरे दूसरे बाजू को किसी चीज ने मुतासर किया, और मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ मीडा मौजूद थी, जो अपनी स्याह आँखों और स्याह बालों के साथ, जो उसकी कमर पर आ रहे थे, सफेद चोगा पहने खड़ी थी। मैंने कहा मीडा, और आपको मालूम है वो इस तरह एक दूसरे की तरफ देख रही थी, वो मौजूद थी, और मैंने उन्हें अपने बाजुओं में ले लिया, और वहाँ से हम घर की तरफ चल दिए। फिर मैं जाग गया, ओ फिर मैं जाग उठा, और फिर मैं उठकर बैठ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया, और आप जानते हैं फिर मैं रो पड़ा, और मैंने सोचा ए खुदा मुझे उम्मीद है इसी तरह वो आएंगी, क्योंकि वो दोनों मेरी जिंदगी से मुंसलिक हैं, और इसी तरह उनसे मेरी औलाद हुई है, और उस जगह पर हम एक नई दुनिया में चल रहे होंगे, ओ मेरे खुदाया, जहाँ कामलियत और हर एक चीज मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओ ये कैसी शानदार बात है, इसे मत खोएं, इसे मत खोएं। खुदा के फजल से जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें, और बाकी जो कुछ बचता है उसकी फिक्र खुदा पर छोड़ दें। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीदी। आए अपने पूरे दिल के साथ इसे दोबारा गाएं और अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं। मैं उससे प्यार करता हूं, उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और मेरी निजात को कलवरी की सूली पर खरीदा। अब देखें सब ठीक है, इस औरत को इस मीटिंग से जिंदा रहने की तो ना थी, ये सच है, लेकिन अब वो यहाँ दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए खुदा की तारीफ कर रही है। यही वजह है कि मैंने यहाँ काफी लंबे वक्त तक देर लगाई, लेकिन आपको नहीं बताया कि मैं क्या करना चाहता था, और मैं मीडा और उसके मुतालिक बात करता रहा, और मैं गौर कर रहा था, और मैंने देखा, और मैंने इस बात पर ध्यान दिया, वो रोशनी आगे पीछे घूम रही थी, और फिर वो आगे बढ़ी और इस औरत पर ठहर गई, और मैंने दिल में कहा यही वो है। ओ, क्या ये शानदार बात नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया, और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीदी। आए अपने दिलों से गाएं।
Just think of his goodness and mercy.
जरा उसकी भलाई और शफकत के बारे में सोचें। मैं उससे प्यार करता हूँ, आमीन। पहले उसने प्यार किया, अब देखें कितनी बेहतर है, आमीन। ऐसा ही है, अब देखा, जाएं और सेहतमंद रहें, आमीन। खुदा का फजल आप पर जाहिर हुआ है ताकि आप ठीक हो जाएं, आमीन। कलवरी की सूली पर, ओ खुदा की तारीफ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब आपके पास्टर साहब की बारी है। मैं 9 से 9:30 बजे तक शुरू होगी, हो सकता है 9 बजे ही शुरू हो, आप 9 बजे शुरू कर देना, मैं 9:30 बजे तक पैगाम शुरू करूँगा।
I can see the coming of the Lord through that.